ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। थोड़ा आवाज को हाई करो। हरे कृष्ण। श्री राजो वाचा नंदः किम करोत् ब्रह्मन् श्रेययेवं महोदयम् यशोदा च महाभागा पपौ यस्यास्तनम् हरिः पितरौ नाल्वबिन्देताम् कृष्णो दारार्भके हितम् गायन्त्यद्यापि कवयो जल्लोकशमलापहम् पितरौ नाल्यबिन्देताम् कृष्णो दारार्भके हितम् गायन्त्यद्यापि कवयो जल्लोकशमलापहम्। श्रीराजो वाच। महाराज परीक्षित ने पूछा, नंदः श्री नंद महाराज, किम क्या अकरोत किए थे ब्राह्मण हे सर्वज्ञ, श्रेया पुण्य एवं इस प्रकार, महोदयम जिसके कारण श्री कृष्ण में ऐसा प्रेम प्राप्त हो गया, यशोदा च और माँ यशोदा, महाभागा महान भागो भाग्यम जस्यासा, पपौ पिए जस्या जिसका, स्तनम स्तन हरि ही परम मनोहर श्री कृष्ण। पितरौ अपने माता पिता देवकी वसुदेव, न नहीं अन्वबिन्देता अनुभव किए, स्वयं माता पिता देवकी वसुदेव भी यह सुख नहीं पा पाए। कृष्णो दारार्भ के हितम, श्री कृष्ण के परमानंद दायिनी बाल लीलाओं को गायंती गाते रहते हैं, अद्य अपि आज भी, कवयः विद्वत गण श्री ब्रह्मा जी, भगवान वेदव्यास देव, श्री नारद जी आदि विद्वान लोग, जात जिसको लोक समलापहम, जगत के समस्त जीवों के पाप को नष्ट करने वाला, तो निरंतर भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला को सुनने से महाराज परीक्षित का चित्त अतिशय आनंद से भर गया, तो वे सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न करते हैं। आपने सुना कि महाराज परीक्षित सातवें अध्याय के शुरू में प्रश्न किए और फिर आठवें के अंत में कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत में प्रश्न और उत्तर भरे पड़े हैं, ये अलग से प्रश्न पूछने की आवश्यकता पड़ती ही नहीं है। सुनने वाला स्वयं ही पूछ रहा है जहां जरूरत है ना। अगर एक एक श्लोक पर प्रश्न किया जाए तो सुखदेव गोस्वामी को भागवत कहने में कई साल लग गया होता है ना। एक एक प्रश्न पर चार, एक एक श्लोक पर चार चार प्रश्न, पांच पांच प्रश्न, तो यह एक फैशन हो गया। वास्तव में श्रीमद् भगवद गीता में बिल्कुल उचित प्रश्न अर्जुन ने पूछा है, भगवान ने उत्तर दिया है। और श्रीमद् भागवतम में शौनकादि ऋषियों ने जहां आवश्यकता है वहां सुत गोस्वामी से प्रश्न किया, और फिर महाराज परीक्षित प्रश्न पूछते जाते हैं। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि महाराज परीक्षित यहां भूल गए, यहां हमें पूछना चाहिए। क्या पूर्ण एकाग्रता से सुन रहे थे, और जहां भी लोक को कुछ संशय होता था या और कुछ विशेष बात सुनना चाहते थे तो महाराज प्रश्न करते थे। इस अवसर पर श्री राजा अर्थात महाराज परीक्षित प्रश्न पूछ रहे हैं। नंद महाराज ने ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिसके कारण उनको ऐसा सौभाग्य मिला, एवं महोदयम, एवं मैंने इस प्रकार महोदयम महाउदय, उदय का अर्थ है उत्कर्ष, कि श्री कृष्ण बारंबार अपना ऐश्वर्य प्रकाशित कर रहे थे फिर भी उनके प्रति अखंड प्रेम अखंड वात्सल्य स्नेह बना रहा। कौन सा पुण्य किए थे? इस प्रश्न में ये बात छिपी हुई है कि सबसे बड़ा सौभाग्य यही है कि श्री कृष्ण में वात्सल्य प्रेम बना रहा है। भगवान श्री कृष्ण में कभी प्रेम घटे नहीं, किसी भी काल में किसी भी स्थान में किसी भी दशा में उनके प्रति इस प्रकार का पुत्र भाव जो ऐश्वर्य दिखाने पर भी बाधित नहीं हुआ। यशोदा च दोनों के बारे में प्रश्न किया जा रहा है कि नंद महाराज ऐसा कौन सा पुण्य किए थे, कौन तप किए थे, और मां यशोदा इन्होंने कौन सा तप किया था, पुण्य किया था। पपौ जस्य स्तनम हरि, मां यशोदा के लिए कह रहे हैं महाभागा, परीक्षित महाराज का उदय महाभागा। महाभागा का अर्थ है महान भागो भाग्यम जस्या सा यशोदा, जिसका महान भाग्य था। तो सबसे बड़ा भाग्य क्या है? पपौ जस्या स्तनम हरि, जिसके स्तन को हरि ने बारंबार पिया और बड़े अनुराग के साथ पिया। तो श्री कृष्ण को स्तनपान कराना यही सबसे बड़ा भाग्य है जिसको मां यशोदा ने पाया। तो यशोदा ने क्या पुण्य किया था, क्या तप किया था? नंद महाराज और यशोदा ने क्या तप किया था? वास्तव में भगवान की नित्य लीला में कोई साधन का प्रश्न नहीं होता है, किस कारण से वो मां बनी और दूध पिलाया, किसी साधन से नहीं होता है। नित्य लीला में ये सब भगवान के नित्य परिकर होते हैं, पर फिर भी जनता को भगवान के भक्ति में लगाने के लिए ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन तप किया, कौन पुण्य किया, कौन साधन किया। यहां श्रेय का अर्थ साधन, श्रेय साध्य के लिए भी प्रयुक्त होता है और साधन के लिए भी। उन्होंने ऐसा कौन सा साधन किया? और आगे और प्रश्न कर रहे हैं कि पितरौ नानो विन्देताम, पितरौ देवकी वसुदेवरु कृष्णोदारार्भ के हितम, कृष्ण की उदार बाल चेष्टाओं को माता पिता होते हुए भी जिन्होंने कृष्ण को जन्म दिया है वे माता पिता होते हुए भी देवकी वसुदेव इस सुख को नहीं पा सकते। माता देवकी ने भगवान को गर्भ में पाला, एक श्लोक याद आता है उसी को मैं पहले पढ़ा, देवक्या पालितो गर्भे, देवकी ने गर्भ में पालन किया और लाल तोंके जसोदया, और जसोदया जसोदा के द्वारा अंके लालित गोद में खिलाए, जिनको देवकी ने गर्भ में पाला और जसोदा ने गोद में खिलाया, ऐसे जस और दया से युक्त गोपाल हमारे हृदय में रमण करते रहे, एक भक्त की प्रार्थना है। तो देवक्या पालितो गर्भे लालितों के जसोदया, जसोदया जूतो बालो गोपालो रमताम हृदय। महाराज परीक्षित को मालूम है कि नंद महाराज और जसोदा का जो सौभाग्य है किसी साधन से नहीं प्राप्त किया जा सकता, पर फिर भी वे पूछ रहे हैं तो सुखदेव गोस्वामी भी वैसा ही उत्तर दिए, जब वहां कोई प्रश्न नहीं है साधन का तो फिर भी साधन के विषय में प्रश्न और उत्तर हो रहा है, क्योंकि कथा सुनने वाले लोगों के मन में आकांक्षा हो सकती है, स्वाभाविक है कि नंद महाराज जैसा और मां जसोदा जैसा क्या सौभाग्य हमें भी मिल सकता है। कथा सुनने के बाद ऐसी इच्छा तो होनी ही चाहिए ना। इसी को श्रवण कहते हैं। श्रवण का अर्थ होता है जिस प्रसंग में श्रवण की बात आई है तो उस प्रसंग में यह अर्थ होता है कि इसी चीज का श्रवण। यदि कोई भगवान श्रीकृष्ण में वात्सल्य भक्ति चाहता है, प्रेम चाहता है, तो किन किन भक्तों ने वात्सल्य किया है, स्नेह से पुत्र बुद्धि से श्रीकृष्ण का पालन किया है, इन बातों को सुनना चाहिए। श्रवण का यह अर्थ नहीं कि कुछ भी श्रवण करे, उसका श्रवण होना चाहिए, तब भगवान में वात्सल्य भाव उदित होता है मां जसोदा और नंद महाराज जैसे। तो जब यह स्वाभाविक उत्कंठा हो सकती है, हम सबका भी ये अनुभव होता है कि जिस समय मां जसोदा की बातें सुनते हैं मन में यही होता है कि क्या हम भी कृष्ण को गोद में ले सकते हैं, और किसी भक्त के मन में यह भी हो सकता है क्या मैं भी जसोदा बन सकता हूं या जसोदा की सखी बन सकता हूं जिससे मैं श्री कृष्ण का लालन पालन करूं, दूध पिलाऊं। तो इसी अभिलाषा या विकल्प का उत्तर देते हैं सुखदेव गोस्वामी। महाराज परीक्षित पूछते हैं कि इन्होंने कौन सा पुण्य किया था, जो पुण्य किया था वह पुण्य अन्य लोग भी कर सकते हैं ना। जैसे बांसुरी के विषय में श्री गोपियां आपस में कहती हैं, अरे सखी इस बांसुरी ने इस वेणु ने कौन तप किया था, गोप्या चरत किमयम कुशलम स्म वेणु, इस वेणु ने क्या तप किया था जो दामोदर के अधर सुधा को पीती रहती है। और कोई कोई गोपी तो ईर्ष्या से बोलती हैं कि ये जब से सौत मिली है कृष्ण को तब से उनको नाना प्रकार से नाच नचा रही है, इसको बजाने के लिए तीन जगह से टेढ़े होकर खड़ा होना पड़ता है इनको। कृष्ण तीन जगह से टेढ़े रहते हैं, बांसुरी बजाते हैं और गर्दन झुकाए रहते हैं और उनके कर कमल पर यह राज्य करती है। इसने कौन तप किया था? जो सुना करके आपस में कहती हैं, तो भगवान श्रीकृष्ण गोपीजनों के इस ईर्ष्या में भाव को जान जाते हैं, तो वे बांसुरी के तरफ से बोलते हैं। बांसुरी जड़ है, वो क्या बोलेगी, लेकिन भगवान ही स्वयं फूंकते हैं इस राग में कि मेरी तपस्या सुनोगे, किस प्रकार से तप की हूं, जन्म लेते ही मैं अपने कुल से अलग हो गई। ये वैराग देखो, बांस जब जन्म लेता है तो अपने खानदान से अलग ही बढ़ता है। तो मैं अपने कुल से जन्म लेते ही विरक्त हूं, क्या कोई सन्यासी बनेगा, मैं जन्म से ही सन्यासिनी हूं, कुल से कोई मतलब नहीं रहा। इसके बाद कई महीने कई वर्ष तक खड़ी धूप में तपस्या करती रहे। भगवान श्रीकृष्ण बोल रहे हैं बांसुरी की तरफ, बांसुरी में ही आवाज कर रहे हैं, इसीलिए गोपियां समझ रहे हैं कि बांसुरी जवाब दे रही है। यही तो भाव है कि जड़ में भी इस प्रकार की भावना करके सोचना, भगवान से इतना प्रेम है कि गोपियां सब कुछ सोच सकती हैं। तो भगवान कहते हैं, बांसुरी कहती है कि मैं जन्म से ही विरक्त रही, इस वक्त घाम वर्षा शीत सब कुछ सही, बांस सहता ही, ऐसा नहीं है कि जाड़ा पड़ा तो जाकर घर में हीटर जलाकर खड़ा हो जाए बांस, या गर्मी पड़ने लगे तो एसी में घुस जाए। तपस्या तो किया है, और इसके बाद मुझे काटा गया जड़ से काटा गया, और धूप में फिर सुखाया गया, मैं धूप में सूखे, और इसके बाद मेरा पत्ता आदि जो भी लता लगी है उसको साफ किया गया, काटा गया, और इसके बाद रेती से काटा गया, और हमारे छाती में सात सात छेद किया गया। मैं इतना कष्ट सही हूं, ऐसे नहीं आवाज आ रही है। तो सात सात छेद किया गया, गरम सलाका से लाल लाल लोहा से छेद किया गया सात जगह, इस तरह मैंने तप किया, तब श्याम सुंदर मुझको अपने कर कमल में लिए। अगर तुम चाहती हो तो तुम भी अपना घर छोड़ दो, अभी तो तुमको घर की चिंता है ना, कि पति क्या कहेंगे, सास ससुर क्या कहेंगे। तो बांसुरी बोल रही है, भगवान उसकी तरफ से बोल रहे हैं, अभी तो घर का ख्याल रहता है ना, हमारे जैसे तुम छोड़ दो कुल को, कष्ट सहो कृष्ण के लिए, और तुम भी अधर सुधर लो, हम कहां रोकने जाते हैं, हम कहां रोक रही हो, स्त्रीलिंग में बोलते, मैं कहां रोकती हूं, तुम भी तपस्या करो, तुम भी ऐसे करो। तो इस तरह से साधन वहां नहीं है, लेकिन फिर भी एक कहने का ढंग होता है, इसने क्या तप किया था, इसने क्या पुण्य किया था, यानी किसी पुण्य के बल से यशोदा नहीं बना जा सकता है, या यशोदा की सखी नहीं बना जा सकता। पूतना को तो भगवान ने यह गति दिया, वो तो एकदम स्पेशल अपनी कृपा से दिए, पूतना ने कोई साधन थोड़े किया था। तो इसलिए हम भगवान की लीलाओं में हमेशा साधन का संकेत किया जाता है, भले वो साधन से प्राप्त नहीं है, फिर भी साधन का संकेत किया जाता है। तो क्या तप किया था, उस तपस्या की विशेषता महाराज परीक्षित कह रहे महोदयम, महान उदय, उदय का अर्थ होता है उत्कर्ष, इसमें इतना उत्कर्ष है, इतना सिग्निफिकेंस है कि जिसने श्रीकृष्ण में अखंड अबाधित वात्सल्य प्रेम रहने दिया, इस पुण्य का फल हुआ, तो कौन सा पुण्य था। और यशोदा जो महाभाग्यवती है, उसने कौन सा तप किया था, कौन सा पुण्य किया था जिसके स्तन को भगवान हरि ने पिया। इतना कह करके महाराज परीक्षित कह रहे हैं, यह सुख है कृष्ण की बाल लीला का सुख, उनको खिलाने का, गोद में लेने का, स्तन पिलाने का, और उनको उखल में बांधने का, उनको डांटने का, मिट्टी खाने पर डांटना, ऐसा सुख बाल लीला का ये जो सुख है अपने माता पिता को भी नहीं मिला। यहां माता पिता से तात्पर्य है जिन्होंने जन्म दिया उनको ये सुख नहीं मिला। वो तो बेचारे जेल में रहते थे, कृष्ण का जन्म होने के पहले भी जेल में थे और जन्म हो गया तो कुछ काल के लिए कंस छोड़ा उनको, घर पर रहते थे, लेकिन घर पर रहने पर भी वो ये भी बता भी नहीं सकते थे कि हमको आठवां बेटा हुआ है, तो गोद में खिलाने की बात क्या थी। वसुदेव जी स्वयं ही पहुंचाया है गोकुल में, स्वयं पहुंचाया। और वसुदेव जी को, मां देवकी को हमेशा भय रहता था कि कहीं पता न लगे कि हमने उसको जन्म दिया, तो कनेक्शन हुआ नहीं बीच में कभी भी। जन्म से लेकर के 10.5 बरस तक, 10.75 बरस तक कृष्ण के साथ कोई संपर्क नहीं। तो जो इस काल में भगवान के उदार अर्घ के हितम बाल लीला थे उसको ये नहीं देख सके, ये सुख नहीं पा सके, तो ऐसा पुण्य देवकी वसुदेव ने भी नहीं किया था जैसा नंद महाराज और जसोदा ने किया था। ये अर्थ है कौन सा पुण्य किया था, मूल बातें ही आ जाती है। देवकी वसुदेव इस लीला के सुख को पाने की बात तो दूर रही, धर धर कांपते रहते थे कि कौन को पता न लग जाए कि हम माता पिता हैं इसके, बहुत डरते थे। और डर करके ही वसुदेव जी ने कृष्ण को गोकुल पहुंचाया था। सब जगह गाया जाता है जन्म लिया कृष्ण ने मथुरा में, पर बधाई नंद बाबा के यहां बज रही थी। वहां तो चुपचाप सन्नाटा था, कोई गीत नहीं, देवता लोग भी आए तो अलक्षित स्तुति करके चले गए। कंस के कारागृह में कोई हलचल नहीं थी, चुपचाप सन्नाटा था, जन्म हुआ सब हुआ, देवता लोग तो मस्त थे, अलक्षित रूप से नाच जा रहे थे लेकिन प्रकट नहीं। मथुरा में कृष्ण जी के भैले जन्मवा बधाई बाजेला, नंद बाबा के दुवरिया बधाई बाजेला। तो बधाई तो बजा ही नंद बाबा के यहां, और जो सुख पाया बाल लीला का नंद और जसोदा ने, ब्रजवासियों ने, वो अद्भुत था। इसलिए महाराज परीक्षित कह रहे कृष्णोदारर्भ के हितम, कृष्णस्य उदार, उदार का अर्थ है परमानंद देने वाली, उत आर, आर का अर्थ होता है सीमा और उत का अर्थ है सीमा पार, इसको उदार कहते हैं। ऐसा आनंद है भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं में जो सीमा से पार आनंद है, उसी को परमानंद कहते हैं। परमानंद देने के कारण भगवान की बाल लीलाओं को महाराज परीक्षित उदार बाल लीला कह रहे हैं। उदार अर्भक इहितम, अर्भक माने बच्चा, और इहितम चेष्टितम लीला, श्री कृष्ण की बाल लीलाएं परम आनंद देने वाली है। पर इस आनंद को जिन्होंने श्री कृष्ण को जन्म दिया वे नहीं पा पाए, लोक दृष्टि से ये बात प्रचलित है कि श्री कृष्ण को जन्म दिया देवकी ने मथुरा में और पालन किया मां जसोदा ने, पर वास्तविक बात यह है कि जसोदा ने भी भगवान को जन्म दिया। जिस समय देवकी जन्म दी भगवान को, उसी समय जसोदा जी के गर्भ से भी श्री कृष्ण प्रकट हुए, ये बिल्कुल सिद्ध बात है। परंतु लोक में ऐसा प्रचार नहीं है, लोक में लोग यही जानते हैं कि देवकी वसुदेव के यहां जन्म हुआ मथुरा में और नंद जसोदा के यहां पालन हुआ, यही बात प्रचलित है ना। तो इसी धारणा की सुरक्षा करते हुए महाराज परीक्षित प्रश्न कर रहे हैं, अन्यथा वे कैसे कहते कि पितरौ, माता पिता इस सुख को नहीं पा सके। उनके लिए पितरऊ कहें और नंद जसोदा के लिए पितर नहीं कहेंगे। तो लोग कहने यही प्रचार है, कोई बात प्रचारित हो जाती है तो हो जाती है, तथ्य कुछ और रहता है। वास्तव में भगवान जसोदा जी के भी पुत्र हैं और देवकी के भी पुत्र हैं, दोनों के पुत्र हैं। तो इस सुख को, बाल लीला के सुख को वसुदेव और देवकी नहीं पा सके, तो देवकी और नंद ने, यशोदा और नंद महाराज ने ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिससे उनका ऐसा प्रेम रहा, उन्होंने सुख भी पाया, यशोदा ने स्तन पिलाया। इतनी महान बाल लीलाएं हैं भगवान की कि गायंती अद्यापि कवयो, चिरकाल बीता है, यह नित्य लीला है, पर आज भी कवि लोग इसको गाते रहते हैं। कवि, सबसे पहला कवि है श्री ब्रह्मा जी, सबसे पहला कवि है। तेने ब्रह्म हृदय यादि कवय मुह्यंत जत सूर्य, श्रीमद भागवतम में पहला श्लोक बता रहा है कि भगवान ने यह श्रीमद भागवतम आदि कवि को दिया। आदि कवि श्री ब्रह्मा जी है। कवि का अर्थ होता है विद्वान। कवि का अर्थ केवल कविता करने वाला नहीं होता है, कवि का अर्थ होता है परम विद्वान। तो जितने भी कवि हैं, जैसे श्री ब्रह्मा जी, श्री नारद जी, भगवान वेदव्यास देव, और आज भी अद्यापि इस कलयुग में भी जो विद्वान हैं, कवि हैं, वे केवल कहते ही नहीं रहते हैं, गाते रहते हैं। किसी लीला को ये एक बार नहीं, दस बार नहीं, निरंतर अद्यापि गाते रहते हैं। शुरू से गा रहे हैं और आज तक गाते रहते हैं। गायंती, इसमें इतना मन रमता है कि भगवान की बाल लीलाओं को ही गाते रहते हैं, गाते रहते हैं, और नंद और यशोदा के सौभाग्य की प्रशंसा करते हैं। गायंती अद्यापि कवयो, अद्यापि आज भी कुछ कवि तो शुरू से ही गा रहे हैं, जैसे ब्रह्मा जी हैं तो नित्य लीला में गाते रहते हैं, गाते रहते हैं। वेदव्यास देव गाते रहते हैं, वेदव्यास देव, श्री नारद जी, और आज के कवि कलयुग में जिनका जन्म हुआ है, ये सभी भगवान की इस उदार बाल लीला, इन उदार बाल लीलाओं को गाते रहते हैं। गायंती, जैसे हम लोग बैठे हैं, हम लोग भी गा रहे हैं भगवान की इस बाल लीला को। इस सप्ताह में भगवान की बाल लीलाएं ही पेश की गई, और इसके बाद अब पौगंड लीला कही जाएगी, जिसमें भगवान उखल में बांधे गए। देखें उखल बिहारी कब संजोग देते हैं उसको कहने का। महाराज परीक्षित जो कथा सुन रहे हैं वे परम आनंद में है, इसलिए कथा के विषय में स्पेशल बात कह रहे हैं। इसको बड़े बड़े विद्वान गाते रहते हैं, बोलते रहते हैं, इतना कथा में रस है। वह सुख तो माँ यशोदा को जो स्तन पिलाने में सुख मिला, श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को देख करके, उनको खिलाकर पिलाकर डांटकर सुलाकर वो सुख मिला, लेकिन वही सुख बड़े बड़े कवियों को, विद्वानों को भगवान की लीला में मिलता है, इसीलिए उसे गाते रहते हैं। यशोदा हरिपाल ने झुलावे, ये सब गीत हैं, आज तक गाते रहते हैं। अनेक कवि महात्मा जन इसको गाते रहते हैं। क्यों गाते रहते हैं? इसमें एक अद्भुत अलौकिक सुख है, इसलिए गाते रहते हैं। कोई ड्यूटी नहीं बंधी है कि गाओ, इसमें एक सुख मिलता है, इसलिए गाते रहते हैं। भगवान जो सुख हो तो गोपाल नहीं गाए, सो नहीं हो तो जप तप किन्हें कोटिक तीरथ निहाय। सूरदास जी कहते हैं कि जो सुख मिलता है कृष्ण का गान करने में, वो सुख जप तप में और कोटिक तीर्थ में नहाने से भी नहीं मिलता। और वे कहते हैं कि किसी बंध्या स्त्री को पुत्र उत्पन्न करने की शक्ति मिल जाए अकस्मात, उसके पुत्र प्राप्त हो, उसको भी वह सुख नहीं मिलेगा जो सुख कृष्ण के गान में कीर्तन में। कई उदाहरण दिए हैं। तो सुख मिलता है ब्रह्मा जी को, भगवान वेदव्यास देव को, श्री नारद जी को और उन्हीं की परंपरा में आने वाले समस्त भक्तों को, वैष्णवों को यही सुख मिलता है। इसीलिए उस सुख के आवेश में इसको छोड़ ही नहीं पाते, गाते ही रहते। क्या क्रिया लगी गायंती, ये भी वर्तमान क्रिया है, पर उसके बाद भी महाराज परिचित कह रहे अद्यपि, अद्यपि आज तक गाते रहते, गा रहे हैं बहुत काल से और आज तक गाते रहते हैं। और भगवान श्री कृष्ण की इन बाल लीलाओं का आनंद नित्य फ्रेश रहता है, नित्य नूतन प्रतिक्षण नव नवायमान रहता है, इसको गाते रहते हैं। और वास्तव में ऐसा फील नहीं होता है भक्तों को कि अभी तो ये हो चुकी लीला, अब दूसरा होना चाहिए। भगवान की बाल लीलाओं का ऐसा आनंद है कि अनेक बार आवृत्ति करने पर भी, हजारों बार कहने सुनने पर भी तृप्ति नहीं होती, क्योंकि तृप्ति कहाँ होती है? तृप्ति उस व्यक्ति को होती है जो इसके अलावा साध दे रखा है। जैसे ज्ञानियों के विषय में कहा जाता है कि ज्ञान जब उत्पन्न हो जाता है तो ज्ञान के साधन को वो छोड़ देते हैं, उनको जरूरत अब है नहीं। योगी लोग सिद्धि प्राप्त करते हैं तो सिद्धि प्राप्त करने वाले जो साधन रहते हैं साधन छोड़ देते हैं, लेकिन भक्ति के क्षेत्र में साधन और साधन इतने मधुर होते हैं कि वे कभी छूटते नहीं हैं। यहां तक कि स्वयं राधा रानी भी अतृप्त रहती हैं। वे ऐसा सोचती, उनके मन में दो बात रहती, एक तो दैन रहता है कि अरे सखी मुझे तो कृष्ण में प्रेम ही नहीं हुआ, तो प्रेम उत्पन्न होने के लिए वे साधन करती रहती हैं, साधन करती हैं, वे भी जप करती हैं, वे भी भगवान की लीलाओं को सुनती हैं, कई साधन करती रहती हैं, क्योंकि उनको तो ऐसा होता है कि प्रेम का अंकुर भी नहीं उगा हमारे भीतर। और हे सखी यदि प्रेम रहता तो मैं कैसे उनके विरह में जी सकती थी। तो वो भी साधन का आनंद लेती हैं। एक श्लोक में श्रीमद् सनातन गोस्वामी ने कहा है कि यह बाला राधिका जमुना जी के तट पर गोविंद के नामावली को गा रही है, नाम गा रही है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ऐसा नहीं प्रेम उत्पन्न हो गया तो साधन छोड़ दिया, प्रेमी को ऐसा अनुभव ही नहीं होता है कि हमको प्रेम हो गया। जैसे सामान्य भक्त लोग जप करते हैं वैसे प्रभुपाद भी जप करते थे। अब उनको क्या जप करने से मतलब था, लेकिन फिर भी वो रस है नाम का। राधा रानी कहते हैं कि हे सखी जब मेरी जिह्वा पर यह कृष्ण नाम आता है तो ऐसी इच्छा होती है कि हमको लाखों लाख जिह्वा मिले, लाखों मुख मिले और एक एक मुख में लाखों जिह्वा फिट हो और मैं बोलती रहूं। और जब कान में कृष्ण नाम प्रवेश करता है तो यही इच्छा होती है कि हमको करोड़ों कान मिला होता तब मैं प्रियतम के नाम को सुन पाती। बंगला में एक पद है कि सही केवा सुना इल श्याम नाम, काने रो भीतर दिया मर में पसी लगो आकुल करी लमोर प्राण। श्याम ना जानी कतेक मधु श्याम नाम आछे गो बदलो छाड़ीते नहीं पारे। इस श्याम नाम में, कृष्ण नाम में कितना अमृत ठुस ठुस करके भरा गया है कि बदन इसको छोड़ नहीं पाता है, जीवा छोड़ नहीं पाती। तो और जो साधन है उसमें ऊब है, व्यक्ति घुटने लगता है कि अब तो बहुत किया, ये किया वो किया, लेकिन भक्ति में ये आनंद में है। अतो वही कवयो नित्यम भक्तिम परमया मुदा वासुदेव भगवती कुर्वन्ति आत्म प्रसादनी। ये भक्ति आत्म प्रसादनी है, परमानंदमयी है। तो आज तक के कवि लोग, विद्वान लोग क्यों गाते रहते हैं, जिनको प्रेम प्राप्त हो चुका है पर वे भी अतृप्ति का बोध करते हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु एक श्लोक में कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण में हमारा प्रेम का गंध भी नहीं उत्पन्न हुआ, कृष्ण का प्रेम मुझे कुछ मिला ही नहीं। तो पूछा गया कि तब इतना रोते क्यों हैं, इतना क्यों रोते हैं, तो वे कहते हैं मैं रोता हूं अपना सौभाग्य प्रकट करने के लिए कि दुनिया समझे कि कृष्ण का भक्त है और कृष्ण के विरह में रो रहा है, क्योंकि मुझे यह अच्छा लगता है कि लोग मुझे कृष्ण का भक्त कहें। तो मुझमें भक्ति नहीं है, प्रेम नहीं है, लेकिन मैं दुनिया हमको माने कि बड़ा भक्त है तो इसके लिए मैं रोता हूं। तो देखिए भगवान की बात, क्रंदा में सौभाग्य भरम प्रकाशित न प्रेम गंधोस्ति दरोपी में हरम। हरि में प्रेम की गंध भी नहीं है मुझमें, लेकिन क्रंदा में सौभाग्य भरम प्रकाशित, मैं अपने सौभाग्य को प्रकाशित करने के लिए रोता हूं। जब उनकी ये बात, उनको भी ऐसा महसूस नहीं होता है, स्वयं भगवान को भी भक्त भाव में, कि मुझे कृष्ण का प्रेम मिल गया, जबकि स्वयं ही प्रेम स्वरूप है और कृष्ण भी वही है, भावमय भी है रसमय भी है। यही अनुभव होता है भगवान के भक्तों कवियों को, इसीलिए गाते ही रहते हैं। अच्छा, साधन के रूप में गाते हैं ऐसी बात नहीं है, अगर प्रेम में मिल जाए तो फिर साधन छोड़ देंगे ऐसा होगा, लेकिन साधन के लिए ही नहीं करते, वो उसको साध्य मानते हैं, यही जीवन है, यही करना है, इसी में सुख है। भगवान के नाम कीर्तन में और भगवान की कथाओं में यही जीवन है, यही आनंद है। और घर गृहस्थी के काम में लगा रहता है आदमी, जिंदगी भर किसी की उबन होती नहीं है, नित्य ही नया आनंद रहता है ना, कोई जीने से कभी उबा नहीं। कोई कोई उबते हैं जो आत्महत्या कर लेते हैं, लेकिन जीने से कौन उब रहा है। और घर गृहस्थी का संबंध है पति के साथ, पत्नी के साथ, बच्चे के साथ, कहां मन उब रहा है, इसी में कुछ सुख मिलता है आदमी, इसी में रमा रहता है। फिर भगवान से प्राप्त होने वाला सुख अगर मिले तो कौन छोड़ेगा उसको। तो गायंती का अर्थ है, कभी लोग आज भी गाते रहते हैं भगवान की इन लीलाओं में, जो सुख है वही सुख उसके गान में है, वही उसके श्रवण में है, इसीलिए विद्वान लोग गाते रहते हैं सुनते रहते हैं। और भगवान के परिकरों में कोई साधन बता करके और लोगों को प्रेरित करते हैं। तो सुखदेव जी उत्तर दे रहे हैं, द्रोणो वसूनां प्रबलो धरया सौभाग्या करिष्यमाण आदेशान ब्रह्मणस्तमुवाच। एक बार ब्रह्मलोक में भगवान ने द्रोण नाम के वसु को और उनकी पत्नी धारा थी, वे लोग तैयार थे ब्रह्मा जी की आज्ञा पालन करने के लिए, ब्रह्मा जी उन पर बहुत प्रसन्न थे, ऐसे शुरू से ही बड़े सुशील थे और ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन करना चाहते थे। ब्रह्मा जी किसी को उत्पन्न करते थे तो चाहते थे कि यह मेरी आज्ञा का पालन करें। ये स्वाभाविक है, जगत गुरु है, भगवान के बाद वही है, तो सबको कार्य में लगाते थे। द्रोणो वसुनाम प्रबल, वसुओं में सबसे श्रेष्ठ वसु अपनी पत्नी भार्या के साथ ब्रह्मा जी का आदेश पूरा करने के लिए तैयार हुए। आदेश पूरा करने के लिए तैयार हुए तो ब्रह्मा जी ने आदेश दिया कि तुम लोग मथुरा मंडल में जन्म लो, मथुरा मंडल में, और गो पालन करो, गायों की रक्षा करो, पालन करो। कितना महत्वपूर्ण काम है गौ का पालन। प्रचेताओं के वंश में आए हुए, प्रचेता के एक पुत्री के गर्भ से 8 वसु का जन्म हुआ था, उनमें श्रेष्ठ थे द्रोण। उनको ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम लोग गोपालन करो, और गोपालन के लिए मैं क्षेत्र बता रहा हूं। भारतवर्ष में मथुरा मंडल है, वहां मतलब 84 कोस ब्रज, यहां पर जाओ और वहां गायों को रह करके पालन करो। शिक्षा दो कैसे गाय की रक्षा की जाएगी, पालन किया जाएगा, सबको सिखाओ। गोपालन महत्वपूर्ण कार्य है, इसके लिए स्वयं भगवान भी आए और ब्रह्मा जी आदेश दिए, तो तैयार हो गए। तो ब्रह्मा जी से ब्रह्मस्तम वाच, ब्रह्मा जी से बोले जाते और लव महादेवे भूमि विश्वेश्वरे हरऊ भक्ति स्यात् परमालोके जयांजो दुर्गतिम तरेत। जब हम मनुष्य लोक में जाएं आपके आदेश के अनुसार गोपालन करने के लिए, तो जब हमारा जन्म मनुष्य लोक में हो, पृथ्वी पर जाएं मथुरा मंडल में ब्रज में, तो भगवान हरि में परम सुंदर श्रीकृष्ण में, हरि में हमारी परमा भक्ति हो, कृपया आशीर्वाद दीजिए हमारी भगवान कृष्ण में भक्ति हो। तो संकोच से द्रोण जो थे और धरा ये नहीं कहे कि भगवान हमारा पुत्र बने और उनमें पुत्र बुद्धि रहे, पुत्र बुद्धि से उनमें प्रेम हो, ऐसा नहीं कहे। कई बातें व्यक्ति नहीं कह पाता है, कैसे कहे कि तीनों लोकों का ईश्वर सबका मालिक हमारा बेटा हो जाए और हम इसी भाव से उसकी सेवा करें, ऐसा नहीं कहे। परंतु ब्रह्मा जी तो मनोज्ञ हैं, मन की बात जानते हैं, तो ब्रह्मा जी ने इनको आशीर्वाद दिया कि भगवान तुम्हारा पुत्र बनेंगे और पुत्र भाव से ही उनमें तुम्हारा प्रेम होगा। आगे का श्लोक बताना है तो ये वर मांगे कि विश्व के ईश्वर, ईश्वरों के भी जो ईश्वर हैं, परम मनोहर हैं, उन भगवान में, महादेव में, वहां मैंने महान देवता, जैसे महादेव हम कहेंगे तो जनरल पता ही लगता है महादेव माने भगवान शिव, लेकिन असली महादेव भगवान हरि है। महादेव, देव का दो अर्थ होता है, देव का अर्थ है परम पूज्य और देव का अर्थ होता है परम क्रीड़ाशील, क्रीड़ा के खेल के लिए देव शब्द प्रयुक्त होता है। तो ब्रज में भगवान क्रीड़ा करेंगे, विविध लीला करेंगे, ऐसे परम मनोहर श्री कृष्ण में हमारी भक्ति हो और वो भी परमा भक्ति हो, परम शुद्ध भक्ति। भीतर मन में यही था कि वे हमारा पुत्र बने और पुत्र बुद्धि से हमारा मन सदा उनमें लगा रहे, हम उनसे प्रेम करें, पर खोल करके नहीं मांगे। पर ब्रह्मा जी ने कहा अस्तु इति उक्त, सब भगवान ब्रजे द्रोणो महाजस जगे नंद इति ख्यातो जसोदासा धरा भवत। ऐसा कहने पर द्रोण महाराज जन्म लिए ब्रज में, उनका नाम हुआ नंद महाराज, महान जशस्वी और उनकी पत्नी धरा जिसका नाम था वो यशोदा हुई। ततो भक्तिर भगवती पुत्री भूते जनार्दन दंपत्योर नितराम आसित गोप गोपी सुभारत। हे भरतवंशी परीक्षित, जब भगवान अवतार लिए इनके यहां तो पुत्री भूते पुत्र बन करके, तो ऐसे पुत्र बने हुए जनार्दन में श्री कृष्ण में इनकी नितराम भक्ति थी। गोप गोपियों में प्रेम तो गोप गोपियों का भी था, वे भी माता पिता थे। जब भगवान ने ब्रह्मा जी के द्वारा वत्स हरण होने पर अपने को सखाओं के रूप में व्यक्त किया और बछड़ों के रूप में, तो ये भी दूध पिलाए थे, गोपियां भी दूध पिलाई थी। पर उन सबों में यशोदा जी सबसे श्रेष्ठ थे। गोप गोपीसु, गोपों में नंद महाराज और गोपियों में मां यशोदा श्रेष्ठ थे। इनकी बहुत भक्ति थी भगवान में। किसमें? जनार्दन में। जनार्दन का अर्थ होता है जन का अर्थ है भगवान के पार्षद, तो अर्दन का अर्थ है प्रार्थना। भगवान के पार्षद जिनकी प्रार्थना करते रहते हैं हमेशा, जिनको चाहते हैं कि हम पर कृपा करें, हमको यह सुख दें, बाल लीला का सुख दें, तो उनको जनार्दन कहते हैं। यहां पर श्रीपाद सनातन गोस्वामी ने अर्थ किया। तो पुत्री भूते जनार्दन है, पुत्र बने हुए जनार्दन में श्री कृष्ण में जो रूप गुण लीला आदि से संपन्न है भगवान है। भगवती जनार्दने पुत्री भूते दंपत्यो नितराम आसित गोप गोपी सुभारत। गोप और गोपियों के बीच सबसे अधिक पुत्र भाव और स्नेह इन्हीं दोनों दंपति का हुआ, धरा और द्रोण का, जो यशोदा और नंद बने। कृष्णो ब्रह्मण आदेशम सत्याम कर्तुम ब्रजे शिशु ब्रजे विभु सहरामो वसंश्चक्र तेषाम प्रीतिम स्वलीलया। ये उत्तर दे दिए सुखदेव गोस्वामी। कृष्ण ब्रह्मा जी की बात को सत्य करने के लिए, ब्रह्मा जी ने कहा था कि भगवान तुम्हारा पुत्र बनेंगे और उनमें तुम्हारा वात्सल्य भाव रहेगा, बहुत अच्छा से रहेगा। तो ब्रह्मा जी की बात को सत्य करने के लिए भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ उसी ब्रज में रह करके लीला करते थे और अपनी बाल लीलाओं द्वारा सबका आनंद वर्धन कर रहे थे, प्रसन्नता दे रहे थे। तो प्रश्न का उत्तर तो आ गया, लेकिन इतना ही आया कि ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से द्रोण और धारा में श्री कृष्ण के प्रति ऐसा प्रेम उत्पन्न हुआ। पर ये उत्तर श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी लिखते हैं कि जो ये नित्य लीला का प्रेम है वो वास्तव में नंद और यशोदा जो भगवान के नित्य माता पिता हैं, उनका अंश थे ये द्रोण और धारा थोड़ा थोड़ा। ये तो उनमें था ही प्रेम। जैसे उदाहरण देते हैं सनातन गोस्वामी कि कोई राजकुमार है, पर राजकुमार को अकस्मात राजा ने कह दिया कि तुम वन में जाओ कुछ दिन घूमो, तो उस पर एक ग्रह लग रहा था, कुचित ग्रह, तो वन में भेज दिए कि वन में रहेगा, उपवास करेगा, ऋषियों का दर्शन करेगा, तो ग्रह कट जाएगा। तो कट जाएगा तो इसके बाद आएगा ही, राजा बनेगा ही। तो वन में अगर कोई दूसरा व्यक्ति, कोई ब्राह्मण, कोई साधु महात्मा उस राजकुमार से मिला जो ग्रह से ग्रस्त है, तो उसको वो लड़का राजकुमार यदि मांगे कि हे मुनिवर मुझे आशीर्वाद दीजिए, ऐसे करके आशीर्वाद दीजिए, तू तो जानता ही है कि ये राजकुमार है, तो वो कह देगा तुमको राज्य मिले। तुमको राज्य मिले। तब दुनिया में हल्ला होगा कि उस मुनि ने वर दिया इसलिए राजा बन गया, बाद में राजा अगर बने, लेकिन राजा तो इसलिए बना कि पहले से ही राजकुमार है, राजा का बेटा है। नंद महाराज और मां यशोदा को ये आशीर्वाद ब्रह्मा जी दें कि पुत्री भूते जनार्दने, भगवान श्रीहरि में जो तुम्हारे पुत्र बनेंगे, ऐसे पुत्र बने हुए भगवान में तुम्हारी परम भक्ति हो। तो उस राजकुमार जैसा है तो पद ही है नंद यशोदा का, वे उनके पुत्र हैं और उनमें प्रेम होगा ही। तो ब्रह्मा जी का आशीर्वाद वैसा ही है जैसे उस मुनि का आशीर्वाद हुआ राजकुमार के लिए। पर ऐसा नहीं कि मुनि किसी को भी, किसी भिखमंगा को आशीर्वाद दे दे कि राजा बनो, तुमको राज्य मिले। तो राज मिलेगा नहीं, राजकुमार को ही मिलेगा, राजा के बेटा को ही वो राज मिलेगा, दूसरे को आशीर्वाद देने से नहीं मिलेगा। तो ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया तो एक प्रकार से सुखदेव गोस्वामी ये भी कह रहे हैं कि इस आशीर्वाद में क्या है। लेकिन नंद और यशोदा के विषय में पूछा गया कौन पुण्य किए थे, तो यही पुण्य किए थे। तो दो बात आती है कि उन्होंने गोपालन किया था और ब्रह्मा जी के आदेश का पालन किया था, ब्रह्मा जी के आदेश से गोपालन किया था। तो पहला तो ये गुण दिखाया गया कि ब्रह्मा जी के आदेश का पालन किया, ब्रह्मा जी परम वैष्णव है। और दूसरी बात, बहुत पुनीत काम की, बहुत पवित्र काम गोपालन किए, तो इसलिए भगवान कृष्ण में प्रेम हो गया इनका। यह तो उत्तर हुआ ठीक है। तो ब्रह्मा जी के जहां तक आदेश का पालन है, ब्रह्मा जी सबके गुरु हैं, सबके जन्मदाता हैं। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें, विचार करें, तो हम लोगों के लिए जैसे ब्रह्मा जी का आदेश पालन किया द्रोण ने, धरा ने, वैसे हम लोगों को करना चाहिए आदेश का पालन प्रभुपाद जी का। अगर उनका कोई आदेश का पालन करे और जो उन्होंने कहा है वही करे तो भगवान श्री कृष्ण में प्रेम प्राप्त होगा, ये निश्चित है। यहां एक उत्तर दिया जा रहा है कि ब्रह्मा जी के आदेश का पालन किया, किसने किया? द्रोण और धरा ने तो किया, लेकिन भगवान ने देखा कि ये लोग ब्रह्मा जी के आदेश का पालन किए हैं तो भगवान पुत्र हो गए। कृष्ण तो सर्वज्ञ हैं, देख रहे हैं कौन व्यक्ति किस तरह से किसी महान वैष्णव के निर्देश का पालन कर रहा है, इसको भगवान देख ही रहे, कृष्ण देख रहे हैं। तो जो भी उस जीव को अभीष्ट है वो दे देते हैं, जो भी चाहता है दे देते हैं। ये भगवान की उदारता है। इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर हुआ। लेकिन चक्रवर्ती पाद जी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि प्रश्न भी पूछा गया कुछ उदासीनता से, और इसीलिए सुखदेव जी उत्तर भी दे दिए, कोई साधन खास बताए नहीं, कोई पुण्य नहीं बताए, क्योंकि उस जगत में, गोलोक में, ये पुण्य कर्म से कोई कृष्ण प्रेम पा जाए ऐसा है नहीं। पर एक बात पर इम्फेसाइज किया कि ब्रह्मा जी के आदेश का पालन, अगर भगवान का प्रेम पाना है तो गुरु के आदेश का पालन, श्रील प्रभुपाद जी के आदेश का पालन, और भी जो भी अपने परंपरा में है, इन आचार्यों के निर्देशन का पालन करना चाहिए। यह बात यहां पर निश्चित है। तो भगवान प्रसन्न होकर के अभीष्ट दे देते हैं। ये मैं कहा था कि बीच बीच में कुछ गान होगा कि आज ये चुप रहने का दिन नहीं है। दिन गायंती अद्यापि कवयो जल लोक समलाप हम, आज भी कवि लोग गाते हैं, तो जो गाये हैं उसी को गाया जाए। तो सचमुच के कुछ कवि आए हैं इसमें, वे लौकिक दृष्टि से भी कवि हैं, और कुछ लोग तो अपनी ही कविता गाते हैं। जो भी हो, भगवान की लीलाएं हैं। बरसाने में रहने वाले एक भक्त धन्य कृष्णदास है, भगवान के बारे में गीत सुनाएंगे कि वो मथुरा में जन्म लिए और नंद बाबा के यहां बधाई बजती है, नंद बाबा के दुआरिया बधाई बाजने, तो इसी गीत को गाएंगे। उनके अनुसार बजाने वाले होना चाहिए। अच्छा ठीक है। श्री भगवान अपने श्रीमुख से अपने जन्म कर्म के विषय में बोल रहे हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म न एति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, कोई भी व्यक्ति जो यह जान जाता है मेरा जन्म कर्म दिव्य है, मेरे जन्म और कर्म बर्थ और एक्टिविटी की दिव्यता को अलौकिकता को समझ जाता है, तो वह इसे गाता है और सुनता है। तो ऐसा व्यक्ति पुनर्जन्म न येति, पुनर्जन्म में नहीं आता है, इस प्राकृत जगत में नहीं आता है। पुनर्जन्म नयति न येति माम येति, तो श्री भगवान कह रहे पुनर्जन्म में नहीं आता है, मेरे पास चला जाता है। तो भगवान इस प्राकृत जगत में बोल रहे हैं, तो इसके लिए भी एक ही शब्द कहेंगे, पुनर्जन्म में नहीं आता है, दुखमय संसार में नहीं आता है। तो कहा जाता है आखिर कहीं ना कहीं जाएगा ना, तो वो माम एती एती मैंने आता है, मेरे पास आता है। भगवान के जन्म कर्म इतने दिव्य है कि उसको कहने वाला, सुनने वाला, समझने वाला व्यक्ति भी जन्म मृत्यु के प्रवाह से पार हो जाता है। तो जिसके जन्म और कर्म को समझने की ये महिमा है, और उसके जन्म कर्म की महिमा को क्या कोई वर्णन कर पाएगा, समझने की ये महिमा है, समझा जाए इसको। और इसमें जीवन लग सकता है, बल्कि जन्मांतर भी लग सकता है, कि कोई दो घंटा, एक घंटा, तीन घंटा बैठकर सुनना ही कोई खास सफिशियंट नहीं है। ये तो हमारा जीवन है जिसमें हमें लगना चाहिए। आप लोगों ने पढ़ा है श्रीमद् भागवतम सुनने के लिए 88,000 ऋषि 1,000 वर्ष के लिए बैठे थे, सहस्र समम आसत, एक यज्ञ का बहाना किए थे, इसका अनुष्ठान करना है, पूरा करना है। लेकिन जब सूत जी आए तो वे सोनकादि ऋषिजन कहते हैं कि हम लोग अब इस यज्ञ को बंद कर रहे हैं, इसमें हमें विश्वास नहीं है। कर्म रश्मिन अनाश्वास धूम धूम्रात्मना भवान आपा यति गोविंद पाद पद्मा सहमत। हम लोग ये यज्ञ चालू किए हैं, उसमें भी कुछ साल बीत गया था उनका, तो यज्ञ का धुआं खाते खाते हम लोग बेदम हो रहे हैं, ऐसे वो कह रहे हैं। धूम धूम्रात्मना, हमारा जो बाहरी कपड़ा शरीर है वो भी धूमिल हो गया है, और मन भी धूमिल होता जा रहा है। इसका क्या फल मिलेगा कोई गारंटी नहीं, लेकिन आप जो गोविंद के चरण कमल का मधु पिला रहे हैं, तो वर्तमान में ही इतना सुख मिल रहा है, और भविष्य तो रखा हुआ है, गोविंद का चरण कमल प्राप्त होगा, उनका धाम प्राप्त होगा। इसलिए हम इस कथा को रोक रहे हैं, यज्ञ को रोक रहे हैं, यज्ञ बंद करते हैं। एक बार मैं वृंदावन में एक कथा सुन रहा था, जब ऋषियों ने कहा कि यज्ञ बंद कर रहे हैं, तो सूत जी ने कह दिया कि भाई यज्ञ जब चालू है तो इसको एक सीमा पर पूरा किया जाए। उन्होंने कहा नहीं नहीं, यज्ञ को पूरा नहीं करना है, ये कभी पूरा नहीं होगा, पूरा होने से कोई लाभ नहीं है, इसको बंद किया जाए। तब तक एक साधु नैमिषारण्य में उठे और जाकर के बाकेट में पानी भर करके जग कुंड को बुझा दी। धुआं उठेगा तो कुछ दिक्कत रहेगा, आप आराम से कथा कहें। तो विनोद कह रहे थे एक साधु एक ऋषि उठे और पानी भर कर लाए और जग कुंड को बुझा दिए, बेकार है। तो हमने भी अपने जीवन में देखा है कुंभ मेला में हरिद्वार प्रयागराज एक बहुत बड़ा पंडाल था और उसमें 1008 कुंड, वैसे कुंड तो 108 थे लेकिन बहुत लोग बैठ रहे थे, तीन तरफ से कम तीन जजमान एक कुंड पर बैठते थे एक टाइम में। अब दूसरे टाइम में होता था तो फिर जजमान बदल जाते थे, नहीं नहीं चारों तरफ बैठते थे चार चार जजमान, और एक ऋत्विक ब्राह्मण माइक पर मंत्र बोलते थे स्वाहा बोलते थे तो पीछे से लोग सब हवन करते थे। तो हम गए थे उस समय हवा नहीं चल रही थी, बहुत कम हवा चल रही थी और पंखा भी चल रहा था तो वो हवा को और इधर ही धकेल रहा था पृथ्वी पर। तो जितने भी यज्ञ कराने वाले ऋत्विक थे और जितने जजमान यज्ञ कर रहे थे सबके आंख से आंसू नाक से पानी गिर रहा था और बोलते थे स्वाहा, तुम लोग ऐसे कर रहे थे, मैं देखा अपने आंखों से। ये क्या हो रहा है, ये कोई भजन है और ये क्या प्राप्ति का है जब वर्तमान में ही मार रहा है, वर्तमान में ही सुख नहीं है तो फल क्या होगा। ये भक्ति आनंद का मार्ग है वास्तव में, ये वर्तमान में भी सुख ही सुख है, भगवान की लीलाओं को सुनने में जो सुख है बोलने में जो सुख है उसकी तो कोई तुलना है ही नहीं। और इसके बाद गति क्या होगी, भगवान अपने मुख से अपने मुखारविंद से कहते हैं कि मां मेति, वो मेरे पास आता है और भगवान के पास सारा सुख है आनंद है। उनके पास हो जाना कितना सुख होगा, जब उनके कथाओं में इतना सुख मिलता है, उनके नाम में इतना सुख मिलता है, तो उनके समीप हो जाना, उनसे बात करना, उनको देखना, उनकी सेवा करना, उनकी बातें सुनना, इस सुख का कोई क्या अंदाज करेगा। और इस संसार में जो भी दुख है सब यही रह जाते हैं दुख, वहां कोई टच नहीं करता, पहुंचता नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, सब दुख यहां है। तो भगवान के बारे में अनादि काल से ऋषियों ने महर्षियों ने और योगियों ने भगवत भक्तों ने, योगी का अर्थ भगवत भक्त, भगवान के भक्तों ने अनेक प्रकार से उनके गुणों का गान किया है, करते ही रहते हैं अद्यापि। इस श्लोक में आया है गायन अद्यापि कवय, कभी लोग आज भी गाते रहते। इसमें एक बहुत बड़ा आह्लाद है, आनंद है, तो लेकिन इस आनंद की अनुभूति कब होती है, जब आदमी दीर्घ काल तक लीलाओं को गाता है और सुनता है तब उसके आनंद का आस्वादन होता है और व्यक्ति छोड़ नहीं सकता। तब तो नैमिषारण्य के ऋषि लोग 1000 वर्ष तक बैठे रहे, बैठे का मतलब अपना नहाना वहाना करते थे, थोड़ा खाना खाते थे, लेकिन 1000 वर्ष तक चला। और कलयुग आने पर वे सब जुटे थे, कलिम आगतम आज्ञाय क्षेत्रेस्मिन वैष्णवे वयम आसीना दीर्घ सत्रेण कथायम सक्षणा हरे। जब कलयुग आया तब डर करके ऋषि लोग जहां तहां से भाग करके नैमिषारण्य आए थे। नैमिषारण्य ऐसा क्षेत्र है, ब्रह्मा जी ने मनोमय चक्र बनाया अर्थात अपने मन को दौड़ा करके देखा, तो आज नैमिषारण्य जहां है वहां पर जाते जाते मनोमय चक्र की धुरी टूट गई, शीर्ण हो गई, जो शीर्ण हो गई तो ब्रह्मा जी ने समझ लिया कि यही स्थान है जहां मन शांत रहता है। तो उन्होंने निश्चित किया कि यज्ञ की भूमि है, भगवान की आराधना की भूमि है। कलयुग आने पर ऋषि लोग पता लगा ही रहे थे, कैलेंडर देखते होंगे कब आएगा भगवान। असल में भगवान जब चले गए उसी समय कलयुग आ चुका था, लेकिन जब तक महाराज परीक्षित थे तब तक शासन जमा नहीं पाए। महाराज परीक्षित के मृत्यु के बाद ये ऋषि लोग जुटे नैमिषारण्य में, और किसके लिए? कलयुग से रक्षा पाने के लिए। तो पहले स्थान देखा जाता है, किस स्थान पर हमारा ये भजन, हमारी भक्ति सफल होगी। प्लेस पहले देखा जाता है, जैसे कोई आदमी कोई फैक्ट्री बैठाना चाहता हो, पहले प्लेस का चुनाव करता है कि कौन स्थान पर हमें कच्चा माल अच्छा से मिलेगा, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा होगी, और सब, और ग्राहक कहाँ मिलेंगे ज्यादा। तो ऐसा विचार करके वो अपनी फैक्ट्री बैठाता है, तो कुछ करता है। तो स्थान भी अलग अलग, प्रत्येक स्थान अपने परमाणु को भरे रहता है, अपनी ओर खींचता है। तो नैमिषारण्य एक ऐसा स्थान था जो भगवान के भक्ति की तरफ लोगों का चित्त खींचता था। इस तरह से विचार करके देखा जाए तो सबसे श्रेष्ठ इस पूरे ब्रह्मांड में भारतवर्ष है, और भारतवर्ष में भी मथुरा मंडल है सबसे पुनीत स्थल। यहां की क्या सबसे बड़ी विशेषता है कि मथुरा भगवान जत्र नित्यम सन्निहितो हरि, यहां भगवान नित्य रहते हैं। ये भगवान का जन्म स्थान, लीला स्थान सब है, तो यहां वे रहते ही है। जब जब मथुरा की चर्चा श्रीमद् भागवत में आई है तब यही कहा गया है कि भगवान यहां नित्य रहते हैं। दो व्यक्ति तो स्पष्ट बोले हैं, सुखदेव गोस्वामी दो बार कहते हैं कि मथुरा में भगवान रहते ही है, मथुरा मतलब पूरा ब्रजमंडल। और श्री नारद जी ने कहा ध्रुव महाराज से, तत्तात गच्छ भद्रम ते जमुना या स्तटम सुचि पुण्यम मधुबनम जत्र सानिध्यम नित्यदा हरे। बेटा कानपुर से भेज रहे थे, कानपुर से चले थे ध्रुव महाराज बिठूर से, वही मनु महाराज की राजधानी। तो तुम्हें यहां से मधुबन जाओ, मथुरा जाओ, मधुबन में जमुना जी के तट पर, जहां जमुना जी के तट पर जहां मधुबन है वहां जाओ, वह परम पुण्य भूमि है जहां भगवान हरि नित्य रहते हैं, सानिध्यम नित्यदा हरे, जो परम आकर्षक है और भक्तों का दुख मिटाने में हमेशा लगे रहते हैं, भक्तों का चित्त चुराने में भी लगे रहते हैं, अपने बांसुरी द्वारा, अपने रास लीला द्वारा, अपने विविध लीलाओं द्वारा जो मन को हरते हैं हरि। तो नित्यम सानिध्यम, उनका सानिध्य, उनका संग नित्य सुलभ। यह ऐसा स्थान है जहां आने वाले को, जहां रहने वाले को भगवान कृष्ण का संग मिलता है, भले उस व्यक्ति को यह अनुभूति हो या न हो। मान लीजिए कोई व्यक्ति सामने खड़ा है, उसकी अनुभूति न हो, मन दूसरी जगह लगा हो, लेकिन सानिध्य तो है ही। सानिध्यम नित्यदा हरे, नित्य ही कृष्ण का संपर्क है, क्योंकि श्रीकृष्ण यही रहते हैं, बल्कि ब्रज को छोड़कर, वृंदावन छोड़कर एक पग भी बाहर नहीं जाते। वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, एकम पादम अपि न गच्छति, एक पैर भी नहीं जाते। जाते हैं मथुरा द्वारका कुरुक्षेत्र, सब जगह भगवान जाते हैं, लेकिन भगवान की अनंत विशेषता है, श्याम सुंदर रूप से वो यही रहते हैं, और अनेक रूप एक साथ प्रकट करके अन्य रूपों से जाते हैं, वही जाते हैं, दूसरा नहीं है। लेकिन बांसुरी बजाने वाले, गौएं चराने वाले, मां यशोदा के प्रिय पुत्र और गोपियों के श्याम सुंदर कहीं नहीं जाते। एक बार एक भक्त, बहुत बड़े विद्वान, बहुत बड़े आचार्य, विख्यात है श्रीपाद वल्लभाचार्य, उन्होंने कृष्ण शब्द का 100 से अधिक अर्थ किया, वास्तव होता ही है कृष्ण शब्द का ऐसा। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु को सुनाना चाहते थे तो उन्होंने कह दिया कि हाँ कृष्ण के तो अनंत गुण है, अनंत विशेषता है, तो उनके हजारों अर्थ हो सकते हैं, सैकड़ों अर्थ हो सकते हैं, परंतु मेरा मन कृष्ण का तीन ही अर्थ समझता है। मेरा मन तीन ही अर्थ समझता है। एक बहुत क्या अर्थ है? पहला ही अर्थ है कि जो तमाल वृक्ष के समान सांवले हैं, कृष्ण का ही अर्थ है। और जो गोपियों के श्री राधा रानी के प्राण वल्लभ है, और जो यशोदा का स्तन पीते हैं, मैं तो कृष्ण शब्द का केवल इतना ही अर्थ जानता हूं। विनोद की भाषा में ये हो रही थी, यही अर्थ है कृष्ण का। यशोदा का स्तन पीने वाला, गोपियों का प्यारा, और सांवले तमाल के समान सांवला, तो ये कृष्ण यही रहते हैं। यशोदा का स्तन पीने वाला, गोपियों से प्रेम करने वाला, रास विहार करने वाला, बांसुरी बजाने वाला कृष्ण यही रहते हैं। हमारो मुरली वालो श्याम, नागरीदास जी ने कहा है कि हमारो मुरली वालो श्याम, मुरली बजाने वाले श्री कृष्ण हमारे हैं। और कोई कहा कि नहीं, तो मथुरा में भी रहते हैं, द्वारका में भी रहते हैं। तो लास्ट में नागरीदास जी कहते हैं, नागई दास द्वारका मथुरा इनसो कैसो काम, हमको इनसे क्या मतलब है, द्वारका और मथुरा से हमको क्या मतलब है, हमारो मुरली वालो श्याम, बिन मुरली बनमाल चंद्रिका नहीं पहचानत नाम। यदि श्रीकृष्ण भी मेरे सामने आ जाए और मुरली न बजा रहे हो और मोरपंख की चंद्रिका न सिर पर बांधे हो, तो उनको मैं नहीं पहचानता। भगवान वास्तव में ऐसे आ जाए तो कुछ भक्त ऐसे हैं जो कहेंगे जाइए जाइए, आप वृंदावन बिहारी रूप में आइए, ये बनकर। तो बिन मुरली बनमाल चंद्रिका नहीं पहचानत ना, मुरली बनमाल और चंद्रिका मोर पंख, इसके बिना मैं कृष्ण को नहीं पहचानू। तो ऐसे प्रभु यहां नित्य ही रहते हैं और अपने रस के आवेश में, एक तो उनका घर है, लीला भूमि है, जन्मभूमि है, तो कहां छोड़कर जाएंगे। आजकल के लोगों के समान उनको जाप थोड़े करना है, यहां से वहां चले जाए, सब कुछ भरा पड़ा है, सारा आनंद है, सारी परफाना दिया यहां है, यहां उनको सुख है, इसलिए यहां से नहीं जाते। तो प्रत्येक भक्त को, व्यक्ति को भगवान अपना सान्निध्य देते हैं। तो हम लोगों का ये सौभाग्य है कि बहुत पुनीत काल में, इस पुनीत देश में है, परम पावन देश, जहां भगवान का प्रेम भरा हुआ, जहां भगवान है, और वो काल में भी सबसे सुंदर जन्माष्टमी का काल है, भगवान इस जगत में प्रकट होते हैं। किस तरह से प्रकट होते हैं इसके बारे में मैं दो चार शब्द बोलना चाहता हूं, दो चार टॉपिक शब्द मैंने। तो पहली विशेषता भगवान के जन्म की ये है कि भगवान इस संसार के बड़े बड़े जो अथॉरिटी हैं, देवता हैं, मैनेजमेंट देखते हैं, उनके बुलाने से आए। ये देवता लोग क्षीर समुद्र के तट पर जा करके भगवान से प्रार्थना किए, पृथ्वी का दुख देख करके। ब्रह्मा जी, भगवान शिव, देवराज इंद्र और नारद आदि ऋषिजन, ये सब साथ में थे। ब्रह्मा जी सबको लेकर क्षीर समुद्र के तट पर गए और उन्होंने प्रार्थना किया। इनकी प्रार्थना से भगवान प्रसन्न थे, पर उन्होंने कहा कि आपकी प्रार्थना से पहले से ही मुझे पता है पृथ्वी के दुख का, मैं अवतार लेने वाला हूं। अवतार से बहुत वर्ष पहले भगवान ने कह दिया कि मैं अवतार लेने वाला हूं और पृथ्वी के दुख का मुझे पता है, कोई आपके द्वारा विज्ञापन की आवश्यकता नहीं है, भगवान सर्वज्ञ है। इस संसार में किसी का जन्म होता है तो उसके जन्म के पहले क्या किसी को पता होता है कि कौन जन्म लेगा, कहाँ है, कहाँ कहाँ है, कोई आतंकवादी है वो जन्म लेगा कि कोई साधु है भजन करता है चित्रकूट में वो जन्म लेगा, कोई बद्रिकाश्रम का आदमी, कहाँ का आदमी, और कौन जाति का और कौन स्वभाव का आएगा हमारे घर में और पृथ्वी का भार उतारेगा कि और बढ़ाएगा, किस लिए आ रहा है, किसी को पता है, पता रहता है। हमने देखा है किसी किसी को पुत्र नहीं होता है तो बहुत मनौती करता है, देवताओं की कुछ साधुओं से भेंट करता है कि हमको पुत्र हो जाए, पुत्र हो जाए। ये उसको पता नहीं होता है कौन व्यक्ति पुत्र बनेगा, पर इतनी लालसा रहती है पुत्र बन जाए, पुत्र बन जाए, पुत्र बन जाए, और पुत्र हो सकता है धुंधकारी आ जाए तो कुछ पता नहीं रहता है। लेकिन भगवान के आने की खबर देवताओं को बहुत बरस पहले मिल गई और भगवान को तो जानकारी है, ये है जन्म की विशेषता, वे अपनी इच्छा से आते हैं। देवताओं को पता हो गया था कि भगवान आने वाले हैं, यहां तक कि यह भी पता था किसका पुत्र बनेंगे, वो जदुवंश में जन्म लेंगे, अवतार लेंगे, और जदुवंशियों में भी वसुदेव नाम का जदुवंश, ये सब पता हो गया देवताओं को। और ये भी पता हुआ कि भगवान की माया भी जन्म लेगी यशोदा के गर्भ से, और भगवान के जो अंश हैं उनसे छोटे हैं वे उनके बड़े भाई बनकर के अवतार लेंगे। और भगवान ने ये भी कह दिया कि देवताओं की स्त्रियां मेरी प्रियाओं की सेवा के लिए जन्म लें, मेरी लीला में सहयोग देने के लिए देवता लोग भी जन्म लें। सब कुछ कंप्लीट बता दिया गया, ये जन्म की विशेषता है। भगवान इस तरह आते हैं, वो जहां जन्म लेना चाहे लेंगे, हम में से कोई व्यक्ति जन्म लेना चाहे तो मरना तो अपने हाथ में मर जाएगा, लेकिन जन्म लेना अपने हाथ में नहीं है, कहां जन्म लेना चाहे। तो मान लीजिए कोई सोचे कि बहुत गरीब आदमी हूं और मैं मर जाऊं और बिरला जी के परिवार में जन्म ले लू, तो क्या क्या उपाय करेगा, या समाज उसके लिए क्या करेगा कि इसका यह मनोरथ था कि बिरला जी के परिवार में जन्म लेने के लिए मरा है, इसका जन्म होना चाहिए बिरला के परिवार में। पूरी दुनिया मिलकर के जन्म नहीं दे सकती और वो अपने आप तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन भगवान जहां जन्म लेना चाहते हैं, जिसको पिता बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, जिस प्लेस को पसंद करते हैं वहां जन्म ले सकते हैं। मथुरा में जन्म लेंगे भगवान, ये देवताओं को सुना है तो मथुरा में जन्म हुआ। और ये जन्म की विशेषता है कि वे स्वयं अपने स्वरूप में प्रकट होते हैं। दूसरा जीव जब जन्म लेता है, चाहे वो देवता हो मनुष्य हो, वो ये शरीर छोड़ करके दूसरे शरीर में जन्म लेता है। उस शरीर के निर्माण में भी बहुत काल लगता है, कम से कम 9-10 महीने तो गर्भ में लग जाता है उसको शरीर बनने में। वो भी शरीर रेडीमेड नहीं है, उसको बनाया जाता है धीरे धीरे। प्रथम बार जो माता पिता मिलते हैं, उनका रजह वीर्य पतित होता है तो उस पर माया शक्ति भगवान की जीवात्मा को बैठाती है और वह वीर्य ही बढ़ने लगता है, आत्मा नहीं बढ़ता है, आत्मा जैसा है वैसा ही रहता है, लेकिन उसके संपर्क से जड़ पदार्थ में स्पंदन होता है, विकास होता है, बढ़ने लगता है। कललम त्वेक रात्रेण पंच रात्रेण बुद्ध बुद्धम इत्यादि बढ़ता है, और बढ़ते बढ़ते 9 या 10वें महीने में बच्चा जन्म लेता है। जन्म वास्तव में हुआ देह का, जीवात्मा का नहीं, लेकिन जीवात्मा उस विशेष देह में जन्म लिया है, इसीलिए उस आत्मा का ही जन्म कह देते हैं लोग। कहा जाता है कब जन्म लिया, किसी से पूछा जाता है, किसी से उसका बर्थडे पूछा जाए कि आपका बर्थडे जन्मदिन क्या है, तो वह व्यक्ति अपने शरीर के जन्म को ही जन्मदिन बताता है और यही लिखा जाता है। ऐसे व्यवहार में कहना भी चाहिए, ऐसा नहीं कि कहीं फार्म भरना हो और पूछा जाए कि आपका जन्म कब हुआ, फार्म भरिए तो कहे हमारा तो जन्म हुआ ही नहीं, मैं अजन्मा हूं, अनादिकाल से हूं, न जायते मृते व कदाचित नयम भूतवा भविता व अनुभूया। न आत्मा कभी जन्म लेता है, न मरता है, न कभी होता है, न होगा, ये बस है। तब तो वो कंपनी वाले कहे कोई पागल है, इसको हटाओ और क्यों में दूसरे को आने दो। यह तो ठीक है व्यवहार में नहीं चलेगा, लेकिन मन में ये बात होनी चाहिए ना, मैं आत्मा। तो चूंकि जड़ देह के साथ आत्मा का जन्म होता है और आत्मा की सत्ता बड़ी सूक्ष्म होती है, केस के अग्रभाग को 100 टुकड़ा किया जाए और 100 टुकड़े में से फिर एक टुकड़ा को लेकर 100 टुकड़ा किया जाए, इतना छोटा जीव का स्वरूप, तो इस भारी भारी शरीर में, इस मांस के लोथड़े में आत्मा कहां है पता भी नहीं, तो केवल माटी का धोंधा है। और इसी के साथ सारा व्यवहार चल रहा है, नाम रूप और क्वालिफिकेशन, कितना पढ़ा लिखा है, कैसा है, काला है, गोरा है, ये है, कितना ऊंचा नीचा, कितना मोटा, कितना छीड़, सब देह के ही कारण हो रहा है, देह के ही व्यवहार को आत्मा पर आरोपित करते हैं। लेकिन भगवान का जब जन्म होता है तो भगवान एक तो जिस स्वरूप में है उसी रूप में जन्म लेते हैं, उनका शरीर न तो छूटता है न मिलता है, वे अपने स्वरूप में प्रकट होते हैं। पर किसी मां के गर्भ में प्रवेश करते हैं तो जन्म देखने में लगता है कि वो भी जन्म ले रहे हैं। इसी भ्रम को मिटाने के लिए भगवान कहता है अवश्य मैं जन्म लेता हूं, मैं किसी को मां बनाता हूं, पिता बनाता हूं, लेकिन मेरा जन्म कर्म दिव्य है, जन्म कर्म च मे दिव्य। ऐसा नहीं है कि मैं जन्म नहीं लेता हूं, लेकिन मेरा जन्म सबसे विलक्षण है। सभी लोग दूसरे शरीर में जन्म लेते हैं फिर मरते हैं, और मतलब शरीर मरता है और छील होता है, बूढ़ा होता है, बीमार पड़ता है, कि मेरा स्वरूप ऐसा नहीं, दिव्य है। यह दिव्य का अर्थ है अलौकिक, अप्राकृत। इस प्रकृति के राज्य में जितने शरीर हैं ये सब रज वीर्ज के मिश्रण से बने हैं, और इनमें विकास देखा जाता है, छीण होता है, रोग होता है, ऐसे जड़ शरीर में आत्मा रह रहा है तो उसमें काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर आदि दोष भरते हैं। लेकिन भगवान इन सब दोषों से बिल्कुल विवर्जित है, उनमें कोई दोष नहीं, अपने स्वरूप में है, हमेशा रहते हैं, उसी स्वरूप में प्रकट होते हैं। इतना अंतर है कि वही स्वरूप थोड़ा छोटा दिखाई देता है, पर है वही। जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए कंस के कारागृह में तो वसुदेव जी देख रहे थे, और मां देवकी कुछ स्पिरिचुअल तंद्रा में हो गई, बेहोशी में। ये भगवान के लीला सिद्धि के लिए ऐसा हुआ, तो जन्म लेते हुए भगवान को देखा, किस तरह मां के गर्भ से बाहर आ रहा है ये नहीं देखा, मां के शरीर से प्रकट हो गया बच्चा, उसको देखा वसुदेव जी ने, वसुदेव ऐक्षत देखा, चतुर्भुजम, चार भुजाएं हैं और चारों भुजाओं में शंख चक्र पद्म धारण किए। भगवान का शरीर चूंकि छोटा है तो इसीलिए शंख भी उसी शरीर के अनुसार ही छोटा, और चक्र भी छोटा, गदा भी छोटी, और पद्म भी छोटा है, अनुपात में लिए हुए, सब दिव्य है। और सिर पर केस काले काले घने थे, काले केस थे, यही है भगवान के जन्म की दिव्यता भी। इस संसार में जब व्यक्ति जन्म लेता है, बच्चा रहता है, इतना टेंडर शरीर, उसमें एक भी केस नहीं रहता है, कोई जुल्फी बढ़ाए हुए जन्म लिया है, कोई ऐसा नहीं देखा गया। केस बढ़ाया हो और साथ में कंघी भी लिया हो और बीच बीच में केसों को फेर रहा बिना केस के आते। पर भगवान का जन्म दिव्य है। वसुदेव जी ने देखा काले काले घुंघराले केस और घने हैं, ये जन्म की विशेषता है। सारे आभूषण पहने हुए जन्म, बाजूबंद मतलब कंकड़ अंगूठियां, गले में मणि कस्त और कमर में करधनी बेल्ट, यहां पर आभूषण, पैरों में आभूषण पायजेब और पैरों की अंगुलियों में अंगूठियां, शरीर बिल्कुल चमक रहा था, चंद्रमा के समान नख थे बड़े हुए चमक रहे थे। मनुष्य विचार नहीं करता है, लेकिन श्रीमद् भागवतम को पढ़ करके विचार करना चाहिए। दुनिया में लोग बहस करते हैं, अरे कृष्ण की क्या विशेषता है, हम ही लोग जैसे थे, चांस था भाग्य था उनको लोगों ने भगवान कह दिया। कोई चांस मिलता है ऐसे गधे को बुद्धि दे देती सरस्वती जी तो ठीक रहता है ना। कोई बुद्धि दे देते, भगवान कृष्ण क्या है इसको तो बड़े लोगों का अनुभव, उनका रियलाइजेशन ही प्रमाणिक माना जाएगा ना। भाई श्री नारद जी भगवान कृष्ण के विषय में क्या बोलते हैं, अर्जुन गीता सुन रहे थे जब भगवान ने कहा कि मैं इस विश्व का नियंता हूं, मैं जन्मदाता हूं, मैं पोषने वाला हूं, पालता हूं, सब कुछ मैं किया, सभी मेरी संतान है, मैं कर्मों में नहीं बंधता हूं, मेरे सारे कर्म दिव्य हैं, जन्म कर्म आदि सब दिव्य हैं। तो अर्जुन भगवान को रोक करके पूछ, मैं इसको विस्तार से समझना चाहता हूं, आप हमको सुनाइए, अपनी विभूतियों को सुनाइए और सब बताइए, विस्तार से सुनना चाहता हूं। और हे प्रभु, आप जो कुछ अपने विषम में कहे हैं आप स्वयं बोल रहे हैं, तो सर्वम एतद रीतम मन्ने जन्मम बदसी केशव, हे केशव आप अपने विषय में जो भी बोलते हैं सर्वम एतद रीतम मन्ने, मैं बिल्कुल 100% सत्य मानता था। अर्जुन कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, वे बड़े बड़े महामुनियों का संग किए थे, वनवास के समय मुनियों के यहां महाराज युधिष्ठिर जाते थे, तो उस समय भीम अर्जुन नकुल सहदेव भी जाते थे, महारानी द्रौपदी भी साथ में रहती थी, जैसे मार्कंडे जी का संग हुआ, लोमस जी का संग हुआ, बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि सब मिलते रहते थे, उनके साथ सत्संग किए थे, बहुत सुने थे, और वे सभी लोग भगवान कृष्ण के विषय में बोलते थे। भगवान श्रीकृष्ण इस पृथ्वी पर प्रकट थे तभी उनकी महिमा सारे संसार में फैल चुकी थी। उसी समय कुछ कार्य करने से, जैसे है भगवान ने गिरिराज उठा लिया, आज 7 वर्ष का लड़का बहुत भारी पत्थर उठा ले तो दुनिया के सारे न्यूज़पेपर भर जाएंगे, हेडलाइन में यही न्यूज आएगा और टीवी पर आएगा, दिखाया जाएगा, है कि नहीं, इस बच्चा ने इतना कई क्विंटल उठा लिया। और भगवान 7 वर्ष के थे बच्चा, तो 7 दिन 7 रात अपने बाएं हथेली की कनिष्ठा अंगुली पर पर्वत उठा ले, तो यह खबर कितनी फैली होगी सारे संसार में, बहुत फैली होगी। इस तरह की अनेक लीलाएं करते रहते थे, फैली थी बात। इसीलिए ऋषि लोग मुनि लोग महाराज युधिष्ठिर को ये बताते थे, अहो निर्लोके बत जुयम निर्लोके बत भूरी भागा लोकम पुनाना मुनयो भी अंति जैसा गृहाना वसती साक्षात गुढ़म परम ब्रह्म मनुष्य लिंगम। ओ हे महाराज युधिष्ठिर, नारद जी कहते हैं इस पृथ्वी पर सबसे भाग्यशाली आप लोग हैं, राजसूय सभा में बोल रहे हैं, यूयम निर्लोके बतभूरी भागा, मनुष्य समाज में आप अत्यंत भाग्यशाली हैं, क्योंकि आपके घर में मुनयो भियन्ति मुनि जन आते रहते हैं, क्यों आते रहते हैं, क्योंकि आपके घर में साक्षात परब्रह्म मनुष्य रूप में रह रहे हैं। इसका पता ऋषियों को हो गया था, तो कोई न कोई बहाने से आते ही रहते थे। और जब यज्ञ हुआ राजसूय यज्ञ, तब तो कोई बहाना करना ही नहीं पड़ा, सब अपने आप ही आ गए, क्योंकि श्री कृष्ण को देखने के लिए आते थे। जब ये पता चलता था जिसका हम भजन कर रहे हैं, जनन जनन साधना किए, वे परब्रह्म परमेश्वर जगदीश्वर साक्षात भगवान हस्तिनापुर में है, आए हैं महाराज युधिष्ठिर के यहां, अरे कौन अभागा नहीं देखने जाएगा। यही हम लोग सुन ले कि भगवान साक्षात प्रकट हो गए यहां पर, तो कितनी उत्कंठा होगी जाने की। और संसार में ऐसा चल रहा है, कुछ लोग तो जनता को आकृष्ट करने के लिए अपने आप घोषित करवा देते हैं अपने प्रेमी या शिष्यों द्वारा, कुछ ऐसा घोषित करवा देते हैं, वो कहता है कि साक्षात परमात्मा है अमुक साधु, ऐसे प्रचार करता है। अब झूठा प्रचार सब है। एक बार भगवान चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन आए थे, एक दिन हल्ला हुआ कि कृष्ण कालिये दह में प्रकट हुए, तो चैतन्य चैतन्य प्रबोधन कालिये दह में प्रकट हो गए, तो बहुत लोग जाते थे रात को देखने। यमुना जी के तट पर परिक्रमा मार्ग जो तट था, वहां खड़े होकर के अब देखते थे और आकर के कहते थे, हाँ हमने आंख से देखा है, साक्षात देखा है, भगवान कृष्ण प्रकट हो गए। आज से 500 वर्ष पहले प्रकट हो गए। तो ये बात जब कानों काने फैली, तो भगवान के साथ जो आए थे बलभद्र भट्टाचार्य सेवा करने के लिए, उन्होंने एक दिन चैतन्य महाप्रभु से कहा कि भगवान प्रकट हुए हैं, एक दिन दर्शन की इच्छा है, आप भी चलिए। ये तो भगवान ही थे, लेकिन इनको कहा कि आप भी चलिए और भगवान का दर्शन करावे। रात में, रात में चैतन्य महाप्रभु वृंदावन में नहीं रहते थे, वहां अक्रूर जी अक्रूर घाट पर रहते थे, जो अक्रूर जी का मंदिर है ना, वहां चले जाते थे। दिन में आकर के इमली तालाब में बैठ करके जप करते थे, जमुना जी का पानी देखते थे, और रात होने पर चले जाते थे, क्योंकि रात के समय जो विरह होता था रासलीला आदि का स्मरण कर, उसको सह नहीं पाते थे। तो ये व्यवस्था थी कि नहीं, इनको यहां नहीं रखना चाहिए, रात के समय वहां चले जाते थे, दिन में आते थे। तो बलभद्र भट्टाचार्य ने कहा कि भगवान प्रकट हुए हैं, तो भगवान का दर्शन कर ले। तो चैतन्य महाप्रभु को एक थप्पड़ मारे, बातुल आदमी के संग बातुल मत बनो, बातुल वाले पागल, चुपचाप बैठो, पता चलेगा कि भगवान प्रकट हुए हैं। इन्होंने गए देखने के लिए नहीं, लेकिन अब फिर प्रचार हुआ कि एक मल्लाह है अपनी नौका लेकर के रात में मछली मारता था कालीदह में, तो नौका के ऊपर दीपक रखा था, तो उसको लोगों ने कहा कि ये नौका जो है वही कालिये के बड़े बड़े फण है, और फण पर रत्न जल रहा है, वो दीपक का प्रकाश उसी को कहते थे कि मणि जल रहा है, और मल्लाह था वो, तो फण पर था ही, वो खड़ा होकर के नौका खेता था चाहे कुछ करता था, तो उसी को कह दिए कि त्रिभंग ललित मुद्रा में श्रीकृष्ण नाच रहे हैं। कुछ लोग जाते थे देखते थे, किसी ने ऐसा प्रचार कर दिया तो मान रहे थे कि वो मल्लाह ही कृष्ण है, नौका काली नाग है, और दीपक जो था वो मणि जैसा जल रहा है। फिर बाद में प्रचार हो गया सत्य बात थी, तब भगवान चैतन्य महाप्रभु ने तुम कहा कि तुम कहते थे चलो दर्शन करें घूम आए, यही है ना भगवान। तो इस तरह से जैसे मल्लाह को देख करके भ्रम होता था, ऐसे कितने थर्ड क्लास के साधु बने हुए इन लोगों को, इनकी मुद्रा चुपचाप रहना, कुछ ढंग दिखाना, झूठा खाने को देना और सब, और किसी को झूठा ऐसे कह दे, कुछ धूली दे दिए, कुछ सिर पर हाथ रख दिए, तो वो प्रचार करने लगा हमारी आंखें खुल गई, मेरी आंखें बंद थी, मैं अंधा था, दिखाई नहीं पड़ता था, लेकिन धन्य है भगवान, इनके सिर पर हाथ रखने से मुझे दिखाई देने लगा। ऐसा प्रचार होता है तो जनता बेचारी क्या करे, उसको तो अच्छी बात बताने वाला शास्त्र की कोई है नहीं, और गड़बड़ बताने वाले घर घर भरे पड़े। तो मान लेते हाँ ये अमुक भगवान है, ये साक्षात ईश्वर। अभी दो दिन पहले हमसे एक व्यक्ति कहा कि आप आइएगा हमारे यहां, साक्षात मालिक आएंगे। एक व्यक्ति का नाम भी रखा, मालिक मतलब तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण आने वाले हैं। मैं कहा ऐसे भगवान से हमें मतलब नहीं, बहुत देर के बाद मिलेंगे, लेकिन हमें असली भगवान से भेंट करना है। आज मिले या कल मिले, हमको नकली से कोई मतलब नहीं है। ऐसे बात हमसे मत कहो। मैंने कहा कि हमसे ऐसी बात मत बोला करो, हम भी भागवत पढ़े हैं, हम जानते हैं कृष्ण कौन है। तो वो फिर चला गया। तो पता नहीं कितने लोगों को ये कहते होंगे कि ये भगवान आया है। और दर्जनों भगवान एक समय में, इसमें अवतार की कमी नहीं है। घर घर में भगवान है, लेकिन इतना दुख दारिद्र सब भरा हुआ है। भगवान का जन्म और कर्म दिव्य होता है। ऐसे फालतू बता दे कोई कि ये भगवान है, इसे हम लोग जैसे व्यक्ति कैसे मान सकते हैं। श्रील प्रभुपाद अनेक प्रकार के योगियों, दार्शनिकों और विशेष करके योगियों को ये कहते थे कि नहीं, ये सब ठीक है, योगी हैं, भक्त हैं या पहुंचे हुए महात्मा है जो है, लेकिन ये भगवान कैसे, भगवान किसी को कहा जाता था तो ये प्रभुपाद जी उसका खंडन करते थे। नहीं तो वो कहे, केवल बंगाल के लिए लिखे हैं कि उस समय दर्जनों भगवान बंगाल में है। हम तो नहीं जानते थे, गिने भी नहीं थे कौन कौन 12 भगवान है। और एक भगवान का दल दूसरे भगवान को गाली देता है, नहीं नहीं वो थर्ड क्लास का है, ये है वो है, वो नहीं, मैं भगवान। किसी से पूछा गया एक बार कि आपको लोग भगवान कहते हैं, आप क्या मानते हैं अपने को? वो कहा कि मैं अपने शिष्यों का दिल दुखाना नहीं चाहता, वो हमको जो कहे जो सुख माने वही ठीक। ऐसे एक बार मैं पढ़ा था एक न्यूज़पेपर में, एक शिष्य अपने गुरु से पूछता है, नहीं नया विजिट किया था आदमी को, पूछा कि आप कौन है? तो वो गुरु जो था वो कहता है, आपको क्या लगता है कि मैं क्या हूं? पूछा कि आप कौन है, अपना परिचय दीजिए। तो पूछता तुमको क्या लगता है कि मैं कौन हूं? तो वो कहा कि आप तो साक्षात परब्रह्म दिखाई दे। तो वो क्या कहता, तुम्हारा रियलाइजेशन झूठा हो ही नहीं सकता, ये रियलाइजेशन। तो वो रियलाइजेशन का प्रचार करेगा, सुनाएगा 10 को 10, 100 को सुनाएंगे, 100,000 को। इसीलिए इस सत्य के प्रचार के लिए प्रभुपाद जी ने आदेश दिया है कि प्रीच करो, प्रीचिंग इज द एसेंस, प्रचार करो, भगवान के बारे में बोलो, पुस्तकें प्रसारित करो। इसकी जरूरत है, तब लोगों को ज्ञान होगा कि वास्तव में इस जगत का कर्ता धर्ता भगवान श्री कृष्ण है। तो उनके जन्म और कर्मों पर ही विचार करके व्यक्ति जान सकता है ना भाई, कैसे जन्म हुआ और के जन्म में मिलान कीजिए, हजारों मिलान बिगड़ेगा, मेल नहीं करेगा। भगवान जिस तरह से जन्म लेते हैं, जिस अद्भुत तरीके से जो प्रभाव पड़ता है उनके भक्तों पर, मां पर, पिता पर, जन्म के समय जब भगवान मां देवकी के गर्भ में, वसुदेव जी के मन में प्रवेश किए, भगवान का जन्म ऐसे होता है, वे मन में आते हैं और मन से ऐसे उतरते हैं, प्रकट होते हैं। इस संसार में किसी का जन्म होता है वो नीचे से होता है, माता पिता के संग करने से, फिर बीज पर माया देवी उसको बैठाती है। ये अवतार नहीं है, अवतार मन में होता है, मन से तब भगवान हृदय में, हृदय के बाद गर्भ में आते हैं और इसके बाद प्रकट हो जाते हैं। ये भगवान के जन्म का रहस्य है। तो इस प्रकार भगवान के जन्म की अनेक भिन्न भिन्न विशेषताएं हैं, जैसे समस्त आभूषण होना, वस्त्र होना, वस्त्र जो पहने थे भगवान और ऊपर दुपट्टा रखे थे बाल विष्णु, छोटा सा विष्णु भगवान के रूप में, तो कपड़े में कहीं भी सिकुड़न नहीं थी, कहीं सिकुड़न नहीं, लगता था कि अभी अभी आयरन किया हुआ है। गर्भ से और बच्चे आते हैं, जो भगवान अपने को कहता है वो भी आया होगा दुष्ट, तो नंग धड़ंग आया होगा, ये नहीं कपड़ा पहन करके आवे, जन्म लिए हैं सभी तो ऐसे नंग धड़ंग आते हैं ना, कुछ भी साथ में लेकर नहीं आए, भगवान अपना वस्त्र पहने हुए आए, आभूषण भी और आयुध भी, तो मंद मुस्कार है, केश बढ़े हुए थे। दूसरे लोग आते हैं तो केस शून्य रहते हैं। एक कवि ने कहा है बड़े रोचक भाषा में कि बुढ़ापा में और बचपन में कोई भेद नहीं है, वो कविता किया है, पर बुढ़ापा में और बचपन में कोई भेद नहीं होता है। क्यों, क्या क्या भेद नहीं होता है, समता होती है। जब जन्म लेता है बच्चा तो एक भी दांत नहीं रहते हैं, और बूढ़ा होने पर मरने से पहले ही सारे दांत विदा भी हो जाते हैं। जो जन्म लेने की स्थिति रहती है वही मृत्यु के समय भी रहती है, धीरे धीरे दांत टूटते टूटते बस साफ हो जाते हैं। तो बच्चा तोतली बोली में बोलता है तो बूढ़ा भी तोतली बोली में बोलता है, अब क्या करे, बोली उसकी भी ठीक नहीं निकलती है तो बुढ़ापे में भी बोली ठीक से नहीं निकलती, तोतली बोली बोलता है। और बचपन में व्यक्ति रेंग करके चलता है, बकैया चलता है, तो बुढ़ापा में भी ऐसे चलना पड़ता है। देखे है ना, ये तो स्थिति है, बूढ़ा हो जाने पर अब इधर गिरा इधर भहराया, बच्चा भी गिरता है भहराता है, और बच्चा जब जन्म लेता है शरीर पर केस नहीं रहता सिर पर, और मरने से पहले बूढ़ा आदमी के भी सिर से सारा केस विदा हो जाता है, मरते समय भी केस नहीं रहता, जन्म लेते समय भी केस नहीं रहता। एक कवि तो यहां तो प्रेक्षा करता है कि भाई ये दांत क्यों निकल जाते हैं, इनको क्या दिक्कत है, तो उत्तर देता है कि केसों का स्वभाव है काला रहना है, लेकिन जब केसों ने अपना स्वभाव बदल दिया, जब ये व्हाइट हो गए तो, और दांत का स्वभाव है व्हाइट रहना, दांत का स्वभाव है व्हाइट रहना, केस का स्वभाव है काला रहना, जब दांतों ने देखा कि ये केस सब सफेद हो गए हमारा स्वभाव ग्रहण किए, तो ये बगावत करके मुख से सब निकल गए, हम नहीं रहेंगे। देखिए कवियों की अजीब रचनाएं होती है, दांतों ने आंदोलन करके मुख का वास छोड़ दिया। केसों को काला क्यों नहीं रखा जा रहा, और भगवान श्री कृष्ण के केस तो अनादि काल से हैं और अनंत काल तक कभी ऐसा समय नहीं आएगा जब वे सफेद होंगे, अद्भुत उनके केस हैं, फिर उनको केशव कहते हैं, केशों से जो सबको अपने वश में कर ले, केश देखने में कितने लोग व्यस्त रहते हैं, देखते ही रहते हैं कि घुंघराली अलके और उस पर मोर पंख खोसा हुआ, किसका चित्त नहीं मोह लेता है। यह है भगवान के जन्म की विशेषता, कोई भी व्यक्ति कहीं जन्म लिया है क्या केस रहता है जन्म के समय उसको, नहीं, कुछ काल के बाद तब केस बढ़ते हैं। और भी इस तरह से अनेक विशेषताएं हैं। भगवान का जन्म दिव्य है और भगवान का कर्म सब कुछ दिव्य है। कोई भी कर्म करते हैं, जैसे कर्म में पहला कर्म आपने सुना पूतना के प्राणों का शोषण, इसके लिए पूतना को मारने के लिए वो कोई नृसिंह रूप धारण नहीं किए, गोद में लेना चाहे गोद में चले गए, चाहते तो विराट रूप बना करके उसी समय दहला देते, उसको भगा देते, कुछ नहीं किए। और क्या कोई संसार में ऐसा व्यक्ति है जो पुतना जैसी राक्षस के चंगुल से बच जाए, कोई दूसरा बच्चा? बच्चे की बात छोड़ दीजिए, सयाने क्या बच सकते थे? लेकिन भगवान हंसते हुए आंख बंद किए हुए मुस्कुराते हुए उसके गोद में चले गए और जो चाहते थे वही किए। उसने अपना कंचुक धराया भगवान के मुख में और पीने लगे, उस पीने लगे, पीने में ही हाय बाप हाय दादा वो करने लगी, छटपटाने लगी, उसका अपना रूप प्रकट हो गया। भगवान तो पिए कुछ किए नहीं, बच्चा जैसे पीता है मां के स्तन को पकड़ता है दबाता है पीता है, तो ऐसे पी रहे थे, कुछ भी उन्होंने नहीं किया, पुतना को एक थप्पड़ भी नहीं मारा, स्वाभाविक लीला करते रहे पीते रहे और उसी में तड़फड़ा करके मार गए। ये पहला कर्म है भगवान कृष्ण का जो अलौकिक है, विलक्षण है। इस तरह से यहां से लेकर के प्रभास पर्यंत भगवान ने क्या क्या किया इस पर विचार करना चाहिए, इसको सोचना चाहिए रात दिन। भगवान इसके बाद ब्रज में ही क्या क्या किए, तृणावर्त का वध किए, यही नहीं और जो मनुष्योचित लीला करते थे वे भी सब ऐश्वर्य संबलित है। मां को विराट रूप दिखा देना अपने मुख में, आजकल कौन मां अपने बच्चे के मुख में विराट रूप देखी है, सिवाय एक जीभ और दांत के अलावा कुछ होता ही नहीं है ना? कोई उपाय है कि उसके मुख में विराट रूप दे दिया जाए, सेट कर दिया जाए और देखा जाए? ये सब दिखाया भगवान। तो कृष्ण स्वयं भगवान है, ईश्वर है, परब्रह्म है, परमात्मा है, इस बात को स्वीकार करना चाहिए। तो अर्जुन कहते हैं कि सर्वम एतद् ऋतम मन्ये, मैं सब कुछ सत्य मानता हूं। जन्मम वदसि केशव, हे केशव तुम माम जत वदसि, जो बोल रहे हो मैं सब सत्य मान रहा हूं। नहीं ते भगवान व्यक्तिर विदुर देवा न दानवा, हे प्रभु आपके व्यक्तित्व को आपके अवतार को आविर्भाव को देवता तक नहीं जानते हैं और दैत्य भी नहीं जानते। दैत्यों में बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, देवताओं के समान ही वे बड़े बड़े अनुभवी लोग हैं। नहीं ते भगवान व्यक्तिर विदुर देवा न दानवा, दानव भी नहीं जानते, देवता नहीं जानते, तो फिर थर्ड क्लास के बुद्धि वाले मनुष्य क्या जानेंगे? देवता और दानवों को भी ज्ञान नहीं है तो मनुष्य कैसे जानेंगे? मनुष्यों को बहुत हीन माना गया है पृथ्वी में, मनुष्यों को बहुत हीन माना गया है। इसके विषय में एक उदाहरण है कि एक बार मित्र और वरुण ऋषि जो दोनों भाई हैं, वरुण जी और मित्र, इन दोनों ने उर्वशी से प्रस्ताव डाला कि तुम हमारे यहां आओ और हमको स्वीकार करो, हम तुम्हारा संपर्क चाहते हैं। तो उर्वशी ने नकार दिया कि नहीं। तो इस पर उन दोनों ने श्राप दिया, तुम देवता का प्रस्ताव नहीं स्वीकार कर रही हो, तुमको मनुष्य भोगेगा। ये श्राप था, तुमको मनुष्य समाज में रहना होगा, इतना हीन समाज। जैसे आज कोई किसी बड़े व्यक्ति को श्राप दे दे, तुम मनुष्यों का साथ छोड़ करके सुअर के साथ रहो, खोभार में आवास करो, खोभार मतलब सुअर का आवास स्थान, उसी में रहो और सुअर ही तुम्हारा संग करे, तो ये आदमी कितना बड़ा दंड मानेगा। मनुष्य समाज से हीन करके सुअर के समाज में इतना अंतर देवता लोग समझते हैं, मनुष्यों में और अपने में। देवताओं ने कह दिया कि जाओ तुम सुअर के साथ संग करो सुअर के समाज में, मनुष्य तुम्हें भोगेंगे मनुष्य के समाज में रहो। इसी हिसाब से उर्वशी आई थी महाराज पुरुर्वा के पास, मनुष्य के साथ रहना पड़ा। तो जब भगवान का ज्ञान, भगवान के अवतार का रहस्य स्वरूप सब कुछ देवताओं को भी मालूम नहीं है, दैत्यों को भी मालूम नहीं है, तो मनुष्यों को कहां से मालूम होगा। भगवत ज्ञान के विषय में मनुष्यों में सबसे कम ज्ञान है। वास्तव में आप घूम जाइए सारा अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, भारत, सब जगह भगवान को जानने वाले बिल्कुल कम है, बिल्कुल कम। परंतु स्वर्ग में ऐसा कौन देवता है जो भगवान को नहीं जानता है, जरा पता लगाइए। सभी जानते हैं, वहां भोग ज्यादा है, भोगों में भी रहते हैं, लेकिन सबको ज्ञान है कि कृष्ण भगवान है, ईश्वर है, और भक्ति करते हैं। दैत्यों को मालूम है कि भगवान है, विष्णु भगवान है, कृष्ण भगवान है, हमको उसे मतलब नहीं है, लेकिन है भगवान, द्रोह रखते हैं, लेकिन फिर भी है ना। दैत्यों के वंश में भी कुछ ऐसे चंद्रमा और सूर्य की तरह जगमगाते हुए सितारे हैं जिनके कारण उस समाज में भी भगवान का प्रचार है, जैसे प्रहलाद महाराज, बलि महाराज, ये सब दैत्य कुल के रत्न हैं, और इनके कारण दैत्य समाज में भी भगवत भक्ति है, इनके प्रचार से। तो प्रभुपाद जी जब इस पृथ्वी पर अमेरिका में गए और उसके बाद यूरोप या कहीं घूमे, तो सब जगह भगवान के भक्त बने ना। एक प्रभुपाद जी के प्रताप से सारे विश्व में भगवान की भक्ति का प्रकाश है, सब जगह भक्त बने। तो इस तरह से प्रहलाद महाराज और बलि महाराज के संपर्क से दैत्यों में भी भक्ति है, और फिर देवताओं में तो कहना ही नहीं। पर मनुष्य समाज में बहुत कम प्रचार है। आज भी घूम घूम करके देखिए तो सबसे बुद्धू प्राणी, सबसे डल माइंडेड मनुष्य है। ये सब विमान बनाना, कंप्यूटर बनाना, ये सब तो कीड़े मकोड़े से ज्यादा जानते हैं। आपने एक पक्षी देखा होगा, हम लोग देखते हैं खजूर के पत्ते में एक घर बनाता है, घर बना करके और वो घर लटकता रहता है, हवा महल झूलता रहता है। ऐसा पक्षी देखा होगा आपने, या उसका घोंसला देखा होगा, झूलता रहता है, उसी में रहते हैं, सोते हैं, कहीं से खा पी करके आ करके रहते हैं, किचन की समस्या भी नहीं है। और इस वक्त घूमते हैं, रहते हैं, न कोई गंदा जगह है, नाली है, न कुछ नहीं, और हवा में झूलते रहते। इससे ज्यादा बुद्धि है क्या मनुष्य को? अरे उड़ते रहते हैं, अपने पंख से ही उड़ते रहते हैं। और यहां विमान में तो फजीहत होती है, उतरेगा एयरपोर्ट पर ही, उड़ेगा वहीं पर, लेकिन वे कहीं से भी फरफर पंख किए उड़ जाते। मच्छर को भगवान ने बनाया है, इसमें अपने आप सीटी है, जब कहीं आता है तो सीटी दे करके बैठता है। प्रभुपाद जी एक जगह कहे हैं कि हम मान लेंगे ये कुछ करता धरता है, कि मच्छर जैसा एक छोटा सा विमान बनाओ जो अपने से उड़े बैठे, और उसमें सीटी भी हो, दृष्टि भी हो, सब कुछ हो, संवेदनशीलता। इतना छोटा बन जाए, छोटा चीज बना नहीं सकते। और करदम जी जैसा बड़ा विमान बनाओ, वो भी नहीं कर सकते, जिस पर पूरा दिल्ली अट जाए, बॉम्बे अट जाए। करदम जी ने तो ऐसा विमान बनाया था, ये बना नहीं सकते। तो यह कोई तेज बुद्धि की पहचान नहीं है। जिस व्यक्ति के मन में कभी ये नहीं आया कि मैं कौन हूं और इस विशाल विश्व को बनाने वाले के साथ हमारा क्या संबंध है, रिलेशन है, और उस रिलेशन के अनुसार हमारा क्या कर्तव्य है, इस बात का थोड़ा भी, इस बात की जिज्ञासा मन में नहीं उठी, वह व्यक्ति कैसे माना जाएगा कुछ जानता है? कोई कुछ डाल दिया, ट्रक से पटक दिया, उसी को बस जोड़ो घटाओ तोड़ो फोड़ो साइज नापो ये करो। भगवान ने यहां लोहा दे दिया है, प्लास्टिक दे दिया है, पेट्रोल दे दिया है, अब इसी को तोड़ो फोड़ो बनाओ उड़ाओ और कहो कि ओह वाह वाह इतना भारी काम किया। अरे पेट्रोल कौन दिया इस पर तो विचार करो, पेट्रोल कौन दिया, इस्पात कौन दिया है, उसकी दी हुई वस्तुओं को ही तुम रूपांतरित करके और उड़ा रहे हो चाहे कुछ कार्य कर रहे हो। तो इतनी सूक्ष्म जिज्ञासा जिस गधे के मन में नहीं है वह मनुष्य भी नहीं है। और बुद्धि तेज होना ये होना क्या करेगी बुद्धि, ऐसी क्या बुद्धि करेगी जिस बुद्धि से वो अपना संबंध भगवान के साथ समझा नहीं, ये बुद्धि क्या करेगी? हमें शरीर छूटेगा, समाज छूटेगा, सब कुछ, और कहां जाओगे पता ही नहीं है। तो ये बुद्धि नहीं है। इन बातों को समझना चाहिए। वास्तव में भगवान कृष्ण को समझना और उनसे प्रेम करना यही है मनुष्य जीवन की सफलता। प्रभुपाद जी ने साफ कहा है तो क्या किया जाए, किस माने में मनुष्य जीवन सफल है, तो कहते हैं टू अंडरस्टैंड कृष्ण एंड लव हिम। बस संक्षेप में ब्रह्मसूत्र की तरह प्रभुपाद जी बोलते हैं टू अंडरस्टैंड गॉड एंड लव, यही है जीवन का काम। और बड़े बड़े भक्तों ने, जैसे प्रह्लाद महाराज ने, भगवान के अवतार ऋषभ देव जी ने, ये कहा है कि फालतू काम धंधा करके और जीवन बर्बाद करना ये ठीक नहीं है। न साधु मन में जतयात मनोयम क्लेशदय आसदेह, तो देह पहले से ही क्लेश दे रहा है, फिर ऐसा कर्म करो कि वो कर्म और दुख दे, दूसरा शरीर लेना पड़े, मैं इसको अच्छा नहीं मानता। न साधु मन में अच्छा नहीं मानता। अच्छा है भगवान को समझने का प्रयास करना, उनसे प्रेम करना। तो भगवान को समझने का तरीका है, ध्यान करना तरीका नहीं है। ध्यान से एक व्यक्ति नहीं जान सकता है, न चान्य एकोपि चिरम विचिन्वन्। ब्रह्मा जी कहते हैं अगर कोई ध्यान करे या भक्ति के अलावा कोई दूसरा उपाय करे तो चिरम विचिन्वन अपि, चिर काल तक सोचते हुए भी एक व्यक्ति भी आपको नहीं जान सका। ये ब्रह्मा जी बोलते हैं अपनी स्तुति में, भक्ति की प्रशंसा करे, कोई भक्ति करता है आपके विषय में, श्रवण करता है, कीर्तन करता है, तो वह आपको जान जाता है, लेकिन चिरम विचिन्वन चिरकाल तक खोज रहा है, चिंतन कर रहा है, वो एक आदमी भी नहीं जाना आज तक। ब्रह्मा जी तो सब देख ही रहे हैं कौन क्या है, वे बोल रहे हैं कि चिरम विचिन्वन चिरकाल तक आपको पाने का प्रयास कर रहा है लेकिन उपाय बिल्कुल गलत है, अतः एक व्यक्ति भी आपको अपने प्रयास से नहीं जान पाया। और भक्ति से तो आप बिल्कुल सुलभ है, भक्ति से प्राप्त हो जाते हैं। तो भक्ति में प्रथम भक्ति है सुनना, तो कीर्तन करना है, मैंने नौ प्रकार की जो भगवान की भक्ति है, इस भक्ति को करने पर व्यक्ति भगवान को जान जाता है। इस भगवान ने कहा कि मेरा जन्म कर्म दिव्य है, इसको जानने वाला जन्म मृत्यु से पार हो जाता है। तो जिज्ञासा होती है ना कि जानेगा कैसे भगवान को, इसी उपाय से जानेगा जो आचार्यों ने पहले किया है। जैसे नमिशरण में ऋषि लोग क्या उपाय कर रहे थे, सुन रहे थे, सुनते थे। महाराज परीक्षित को भगवान का चरण कमल प्राप्त करना था तो क्या उपाय किए, श्रवण किए, श्रवण किए। और जितना भी आप देखेंगे सब जगह उपाय है श्रवण कीर्तन, श्रवण कीर्तन, श्रवण कीर्तन जले करे ऐसे काम, भगवान का नाम जप करना, पद गाना और सुनना, गुनगुनाना, श्रीमंति गायंति गृणंत भिक्षणस स्मरंति नंदंति तवे हितम जना तयव पश्यंत चिरेण तावकम भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम। तो भगवान को पाने का ये उपाय है, भगवान है और अपने समस्त गुणों के साथ है, परम सुंदर है, चिन्मय है, दिव्य है, सबके सुहृद है, सबके स्वामी है, पर उनको हम पाएंगे कैसे जब हम उनके विषय में सुनेंगे। सुनने से भगवान हृदय में उदित होते हैं। श्रीमत श्रद्धया नित्यम गृणतश्च सुचेषितम भगवान कालेन नाति दीर्घेण भगवान विशते हृदय। भगवान हृदय में प्रवेश करते हैं कैसे? कानों के रास्ते से। प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण स्वानम भाव सरोलुहम धुनोति समलम कृष्ण सलिल सजथासर। अतः ये जो हमारे भारतवर्ष में ये परंपरा देखी जाती है, सब जगह भागवत सप्ताह है, प्रवचन है, यह परंपरा है वास्तव में। यह ऐसी बात नहीं कि किसी की गढ़ी हुई बात है। मनुष्य समाज में किसी को फुर्सत नहीं है 7 दिन, अरे बहुत दिन सुनने की, बैठने की। तो ये पद्म पुराण में और स्कंद पुराण में बात लिखी गई है, इसीलिए सप्ताह का आयोजन होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग जो ना समझ है, वे लोग कहते हैं नहीं, सप्ताह नहीं करना चाहिए, सप्ताह नहीं, और नित्यम भागवत सेवया। और ऐसा कहने वाला व्यक्ति एक दिन भी नहीं सुनता है, कह देता है नित्यम भागवत सेवया, भागवत रोज सुनना चाहिए। पर ये तो कहने की बात, तो रोज के अंदर ही 7 दिन है ना, नित्य के अंदर ही तो 7 दिन है ना। तो 7 दिन जब भागवत हो तब मत सुनो, और ऐसे बिना मतलब कि एक दिन सुनो, 2 दिन सुनो, चले जाओ, ये नित्यम सेवा थोड़े है। नित्यम भागवत सेवा नहीं है, भगवान के भक्त की सेवा और भागवत का सेवन नित्य करना चाहिए। यही है नित्य सेवन करना, जब आयोजन हो। जैसे नदी बहती है तो नित्य बह रही है, लेकिन कहीं कहीं दह बन जाता है, कहीं कहीं ह्रद बनता है। तो ऐसे ही भागवत तो रोज पढ़ना ही चाहिए, रोज सुनना ही चाहिए, लेकिन जब सप्ताह हो तो दह बन गया, ज्यादा विहार करेंगे, स्नान करेंगे, होगा। ये परंपरा है, और इसको हम लोग देखते हैं कि भारतवर्ष में ऋषियों ने सब स्थापित किया है, अतः लोग जुटते हैं सुनने के लिए। भगवान की लीला हो रही है, रासलीला आदि, तो लोग देखने के लिए जुटते हैं, सुनने के लिए जुटते हैं। तो ये भगवान को समझने का एक तरीका है, भले उसका रूपांतरण हो गया हो काल के अनुसार, परिवर्तन हो गया हो, भगवान की कथाओं में गान बजान का ज्यादा प्रवेश हो गया है, तो उसके चलते लोग कम समझ रहे हैं, क्योंकि गीत प्रधान होने से फिलॉसफी नहीं समझ में आती। अब कोई प्रोफेसर कॉलेज में गणित पढ़ा रहा हो और बीच में हारमोनियम से गाना चालू करे, इतना प्लस इतना ये होगा, ये जोड़ने से कोई कायदा है? गीत जहां गाना है वहां गाया जाता है, ये नहीं कि सब जगह। भागवत की कथा में फिलॉसफी है, भगवान की लीलाएं है, पहले सुनो ध्यान से, ये मुख्य चीज है। अरे गान बजाने अलग चीज है, भगवान की लीलाओं के साथ ये सब नहीं चलता है। तो ये जो फैशन चल गया संगीतमय भागवत, ये सब नहीं जानने वाले अपना समय पूरा करते हैं। वो ज्ञान नहीं है तो भागवत कहना है तो इतना गा करके पार करो, गा बजा करके पार करो। अरे तुम्हारी कथा में दम होना चाहिए, केवल लेक्चर दो तो सब लोग सुनेंगे। सुखदेव गोस्वामी कोई हारमोनियम लेकर नहीं आए थे, और न कोई टोली और दल लेकर के चले थे भागवत कहने के लिए, अकेले थे, अकेले बोल रहे थे, हजारों ऋषि मुनि सुन रहे थे एकाग्रचित्त। भागवत का ज्ञान होना चाहिए कि सही क्या लिखा गया है इसमें। तो यही परंपरा है हम लोगों की। हमसे भी कभी कभी लोग कहते हैं, महाराज आप चलते हैं तो कोई गाने बजाने का दल लेकर के नहीं चलते हैं? तो नहीं, मिल जाते हैं जहां तहां भक्त लोग, तो वही गाते हैं वही गाते हैं, हम तो समाधान कर देते हैं। लेकिन वास्तविक सिद्धांत यह है कि ये गाना बजाना फालतू काम है। भागवत के प्रवचन में सुनना चाहिए क्या बात सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, महाराज परीक्षित किस तरह से पूछ रहे हैं, क्या सुन रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी ने ये विधि दिया है, सुनना चाहिए, सुनना चाहिए, सुनना चाहिए। गाना हो तो कथा के बाद या पहले गाए, इन कथा को समझाने के लिए गाना जरूरी है ये नहीं होना चाहिए। तो मैं इसलिए इस बात को कहा कि वास्तव में भागवत के प्रवचन से, उसको पढ़ने सुनने से भगवान श्रीकृष्ण का पूरा पूरा बोध हो जाएगा। गीता में भगवान एक श्लोक में कहते हैं, अर्ध श्लोक में है कि असंशयम समग्रम मम यथा ज्ञासिष्ट क्षण। हाँ, कहते मुझमें मन लगा करके, मुझमें आसक्त हो करके तुम जिस उपाय से मुझको पूरा पूरा और बिना संशय के जान जाओगे वो मैं बता रहा हूं। भगवान यहां तक कहते हैं असंशयम, बिना संशय, कोई डाउट नहीं रहेगा, और समग्रम माम, मुझे पूरा पूरा और बिना संदेह के जान जाओगे बता रहा हूं। तो भगवान को पूरा पूरा जाना जा सकता है, बिना संदेह के जाना जा सकता है, और वो है भगवत गीता के उपदेश को ध्यान से सुनना। तो भगवत गीता के उपदेश में अब क्या नौटंकी करनी है, गान बजान करना है, सुनना चाहिए ना भगवान जो बोल रहे हैं। और ये भी कहते हैं कि मनुष्याणाम सहस्र सुख कश्चित जतत सिद्ध है, जतताम अपि सिद्धानाम कश्चित माम व्यति तत्प्रत। हजारों हजारों मनुष्यों में किसी किसी को, किसी एक को सुनने की लालसा होती है, और उसमें भी हजारों में कोई जत्न करता है, और जत्न करने वालों में भी कोई कोई मुझे जान पाता है। बहुत प्रयास भगवान बता रहे हैं, लेकिन मैं जो उपाय बता रहा हूं, शीघ्र ही बिना संशय के, बिना संदेह के तुम मुझको पूरा पूरा जान जाओगे। भगवान सातवें अध्याय का प्रवचन प्रारंभ कर रहे हैं। सातवें अध्याय में बताते हैं, भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रे वचा अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति वास्तव है। ये आठ मेरी भिन्ना प्रकृति है। प्रकृति का क्या अर्थ हुआ, प्रकृति में भी अपरा प्रकृति परा प्रकृति दो प्रकृति है। तो पहले भगवान अपरा प्रकृति का वर्णन करते हैं, कहते हैं अपरयम मितस्तुल्यम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूतम महाबाहो जजिदम धार्यते जगत। अब मेरी परा प्रकृति को सुनो, अपरा प्रकृति का मैं वर्णन किया, भूमि आपो जल, और प्रकृति का क्या मतलब होता है ये समझना चाहिए, किसकी प्रकृति। आजकल लोग कह देते हैं अगर भगवान की महिमा गाइए तो कहते हैं कि नहीं ये प्रकृति कर रही है, नेचर कर रही है, पर किसका नेचर, किसका स्वभाव ऐसा है कि इतनी भूमि इतना जल वायु ये सब प्रकट हो गया, किसका प्रभाव है, ये सब भगवान से प्रकट हुए हैं। तो इस तरह से गीता के प्रवचन को सांगोपांग, और वह भी किसी भक्त के मुख से सुनने पर बोध हो जाता है। जो व्यक्ति भक्त है वही भगवान की महिमा को समझाएगा। अतः भगवान कहते हैं य इमं परमं गुह्यं मद भक्ते सभिधास्यति भक्ति मयि पराम कृत्वा मामे उपैष्यति संशय। जो कोई व्यक्ति भगवत गीता के इस गूढ़ रहस्य को मेरे भक्तों में प्रचार करता है उसके लिए पराभक्ति निश्चित है, और वह मेरे पास ही आएगा शरीर छोड़कर। न च तस्मान मनुष्य सु कश्चिन में प्रियकृतम, उस व्यक्ति से बढ़ करके मेरा प्रिय करने वाला कोई नहीं है और न होगा। सबसे बड़ा प्रिय कार्य है कि भगवान के विषय में बताया जाए ठीक से। तो यह प्रवचन जो लोग करते हैं भक्त लोग, तो यह भगवान का सबसे प्रिय कार्य है। अगर इस दृष्टि से देखा जाए तो खास करके भक्तों में प्रवचन करना, जिससे भक्तों का उत्साह बढ़ता है, कृष्ण से प्रेम बढ़ता है, भक्ति के पंथ पर, अध्यात्म के पंथ पर उनका उत्साह बढ़ता है, तो भगवान को यह कार्य बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय है। प्रवचन करना भगवान को बहुत प्रिय है। कुछ लोग ऐसे कभी कभी कह देते हैं किसी के लिए, कह रहे बोलने में क्या है, करना चाहिए स्वयं। ये तो ठीक है, जो व्यक्ति गीता का ज्ञाता होगा अवश्य भगवान की भक्ति करेगा, करता ही है, लेकिन कभी कभी देखा जाता है कि वो प्रसार में है कोई भक्त, तो भगवान के भक्ति के अंगों का पालन नहीं कर पाता है। तो उसको इस तरह से नहीं पेश किया जा सकता है, नहीं इसको करना चाहिए, अपने आप करना चाहिए, करके और तब बोले, करके तब बोले। और जनता में इन इन वाक्यों का बड़ा प्रभाव होता है, पहले करे और तब इसको करे। ये तो काम है ना, एक सेवा है भगवान की बोलना। जैसे मान लीजिए कोई रेलवे का बुकिंग क्लर्क है, टिकट देने वाला, तो टिकट देना चालू कर रहा है तो वहां कोई जाए और टिकट दे, टिकट दे कि बॉम्बे से वृंदावन, तो वो टिकट लेने वाला कहे पहले करो तब दो, पहले जाओ वृंदावन आ करके टिकट देना, तुम करते नहीं हो टिकट क्यों दे रहे हो। ये कोई ढंग है, उसका वो कार्य है टिकट देना। कोई ऐसा प्रश्न कभी किया है, जहां का टिकट दे वहां जा करके टिकट दे तब तो मर जाएगा, है ना। चेन्नई जाना हो टिकट दे रहा, चेन्नई जा करके दो, तुम स्वयं वहां जाओ और तब दो। इस तरह की बात बोलने वाले भगवान के वाक्यों का परपर्ट नहीं समझ पाते कि भगवान क्या कह रहे हैं। ये एक ड्यूटी, एक सेवा है। भगवान के विषय में बोलना, उनके रूप गुण लीला आदि को बोलना, सिद्धांत को बोलना, एक एक ये परफेक्ट सेवा है। जिस सेवा के लिए भगवान ऐसा कह रहे हैं कि इससे बढ़ करके मेरा प्रिय करने वाला कोई है और न होगा। न च तस्मान मनुष्य सु कश्चिन में प्रियकृतम भविता, न च मे तस्मात अन्य प्रियतर हुए। उस भक्त से बढ़ करके मेरा प्रिय कोई भविष्य में होगा ऐसा नहीं और न है। ये सबसे प्रिय वाक्य है। तो भगवान के प्रवचन को, खास करके गीता के प्रवचन को और भागवत के प्रवचन को इतना हल्का नहीं ले लेना चाहिए। ये सेवा है भगवान की, जिसको उन्होंने अपने श्रीमुख से कहा है, मेरे भक्तों में मेरे इस गुड उपदेश को जो कहेगा अभिधा से। अभिधा का अर्थ समझिए, अभिधा का क्या अर्थ होता है? अभिधा का अर्थ होता है बोलना, जो इसका प्रचार करेगा उससे बढ़ करके मेरा प्रिय कोई है और न होगा। इसका मतलब कि इस कार्य से दूसरा प्रिय कोई कार्य भगवान का है नहीं। दुनिया बनाए हैं, चलेगी दुनिया, इसके विषय में चिंता नहीं करनी है। यहां प्रचार भगवान का करना है। खाने की कमी कभी नहीं होगी, हवा की कमी कभी नहीं होगी, पानी कभी कम नहीं होगा, चलता रहेगा। यहां सबसे बड़ी कमी जो है वो कृष्ण भावना की है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज इस बात को कहते थे, यहां कोई चीज की कमी नहीं है। पूर्ण मद पूर्ण मिदम पूर्णात पूर्ण मुदच्यते, पूर्णस्य पूर्ण मादाय, पूर्ण मेवावशिष्यते। ये सब पूरा है भगवान की व्यवस्था। यहां किसी बात की चिंता न करके एक ही काम की चिंता करनी है, हमारी भक्ति कैसे बढ़ेगी और कैसे जनता की भक्ति बढ़ेगी भगवान कृष्ण में। यही ये कार्य डायरेक्ट भगवान का कार्य है, यह कोई मनुष्य का कार्य नहीं है। जब वो कहते हैं गीता बोल करके कि इसका प्रचार होना चाहिए, इस पर प्रवचन होना चाहिए, पुस्तक डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो अब यही भगवान का काम है ना। भगवान तो कहे कि हम दुनिया बनाने वाले हैं, चलाने वाले हैं सब, तो किसी को नहीं कहे कि थोड़ा हमको सहयोग दो, हम थक गए हैं दुनिया रचने में, सबको भोजन देने में, मेंटेन करने में, और कुछ मदद करो। क्या कहे? कभी कहीं नहीं कहे। गीता बोल करके कहते हैं इसको फैलाने में मदद करो, इसका प्रचार करो। तो क्या भगवान की आज्ञा को समझने में कोई संशय है कि क्या वे चाहते हैं? अतः भगवत गीता पर प्रवचन करने वाला भक्त या श्रीमद् भागवत पर प्रवचन करने वाला भक्त, ये सब भगवान के प्यारे हैं, भगवान की दृष्टि में प्रिय हैं। भले अज्ञ जनता की दृष्टि में कुछ भी लगे, लेकिन यह भगवान का काम है। वास्तव में इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ऐसे कार्य का जो आयोजन करता है वह भी भगवान की प्रसन्नता का कारण बनेगा, भगवान उस पर प्रसन्न होंगे। आयोजन करने वाले पर भी, मतलब अनुमोदन करने वाले पर भी। अनुमोदन कई तरह से होता है, अनुमोदन वाणी से होता है, अनुमोदन धन से होता है, और अनुमोदन केवल बैठने से भी होता है, कथा में आदमी भय थे, यह भी भारी अनुमोदन है, पसंद कर रहा है, दूसरे लोगों को करते हुए देख करके उनकी सहायता करता है, वस्तु से विचार से सब तरह से। क्योंकि भगवान का जब यही कार्य प्रिय है तो क्यों नहीं किया जाए, जितना हमसे हो सकता है करें। तो इस जन्माष्टमी के अवसर पर तो अधिक से अधिक भगवान के विषय में सुनना और उनके जन्मोत्सव की व्यवस्था करना, उनके मंदिर को सजाना जैसा सजाया गया है, कई प्रकार के गमले से फूल से भगवान के घर का श्रृंगार हुआ है, और फिर उनका श्रृंगार, उनका अपना श्रृंगार भी है, उनका ड्रेस है, मुकुट है और सब, यही करना है वास्तव में। भगवान का पर्व आया, भगवान का जन्मदिन आया है तो खूब अच्छा से मनाना। आजकल संसार में फैशन बढ़ता जा रहा है अपना बर्थडे मनाना, ये अपना बर्थडे मनाना एक बेवकूफी है, एक बहुत बड़ी नासमझी है वास्तव में। यह ऐसा इस संसार में जन्म हुआ है, ये कोई ग्लोरियस थोड़े है। हम उदाहरण दिया करते हैं, जैसे किसी आदमी का किसी खास दिन पर कारावास हुआ हो, जेल में गया हो पकड़कर, और साल पूरा होने पर वो जेल में वर्षगांठ मनाया करे कि इसी दिन मैं जेल में आया था तो इसलिए इस दिन मिठाई बांटूंगा और खूब गान बजान होगा। तो जेल में जाना एक सजा है ना, ऐसे ही इस जड़ शरीर में आना ये कोई ग्लोरियस चीज नहीं है, इसको मनाना कितनी नासमझी है। तो कई प्रकार से लोग मनाते हैं, नाच की व्यवस्था करते हैं, नाच नचवाते हैं, भोज देते हैं, ठीक है थोड़ा सा अच्छा कार्य है कि बच्चे का मनाते हैं, लेकिन वास्तव में ये रीति नहीं है। भगवान का जन्म मनाना चाहिए, श्रीकृष्ण का बर्थडे, जन्माष्टमी, और जो भी धन है, जो भी फैसिलिटी है, सुविधा है, भगवान के लिए खर्च करना चाहिए। अन्यथा अपनी वर्षगांठ, अब तो कोई चार साल से बर्फ जेल में आया है, कोई कोई 60 वर्ष के भी पहुंच गए, 60 साल में जेल में है, कोई 50, कोई 70, कोई 35, कोई 30, और ये क्या बनाना है, क्या तमाशा करना है। तो भगवान का वर्षगांठ मनाने से हमारा जीवन भी धन्य होता है, जैसे वृक्ष के जड़ में पानी देने से वृक्ष का पत्ता भी पा जाता है, फल फूल शाखा प्रशाखा सब पाते हैं। सिर्फ भगवान के यदि हम जन्मोत्सव मनाते हैं तो हमारा जन्म उत्सवमय होगा, ग्लोरियस होगा, हम ठीक रहेंगे, हमारा परिवार ठीक रहेगा, बच्चा ठीक रहेगा, पत्नी ठीक रहेगी, सबका जीवन धन्य होगा, केवल इस बात से कि हम भगवान की वर्षगांठ में शामिल हैं और मना रहे हैं, पैसा दे करके, शरीर लगा करके, जैसे तैसे भगवान के जन्मोत्सव को मनाना है। तो कई प्रकार की जरूरत होती है, पहले जैसा समय नहीं रहा, अब तो कई तरह से व्यवस्था करनी होती है, सुरक्षा की भी दृष्टि से सब करना है, तो इसमें कोई सहयोग देता है। अगर मान लीजिए कोई खड़ा है कहीं पर, लोगों को इतना ही गाइड करे कि आप इधर जाइए, आप इधर जाइए, तो ये भगवान की डायरेक्ट सेवा है। और फिर प्रसाद वितरण करना जन्म के बाद, गीत गाना, नाचना, जितना नाचना हो, जितना गाना हो गाना चाहिए, इसमें संकोच नहीं करना चाहिए। नाचने नहीं आता हो फिर भी शरीर को हिलाना चाहिए। ऐसे कुछ भक्त कहते हैं कि कम से कम स्वामी डांस तो सब जानेंगे, दाएं पैर को बाएं, बाएं को दाएं और हाथ को ऐसे करना, ये प्रभुपाद जी ने सिखाया तो इसको स्वामी डांस कहते हैं। तो इतना तो सब कर सकते हैं ना, शरीर हिला सकते हैं और मुख से हरे कृष्ण महामंत्र बोल सकते हैं। श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत बहुत सुविधा दिया, बहुत विधा दिया भक्ति करने की, जिसको सभी कर सकते हैं, बच्चा कर सकता है और बूढ़े कर सकते हैं, पत्नी कर सकती है, पति कर सकता है, मूर्ख व्यक्ति कर सकता है, विद्वान कर सकता है, कलाकार कर सकते हैं, वैज्ञानिक, फिलॉसफर सभी कर सकते हैं, क्योंकि भगवान सबके हैं। जिसके पास जो विशेषता है उस विशेषता को भगवान में लगाए, भगवान की सेवा में। इस तरह से भगवान का जन्मोत्सव मनाना चाहिए और यह जन्मोत्सव हमारे जीवन का प्रत्येक दिन होना चाहिए। प्रत्येक दिन जन्माष्टमी रहे, भगवान हमारे हृदय में प्रकट हो, हमारे वाणी में, हमारे आंखों में, हमारे देश में, घर में, जन जन में भगवान कृष्ण छा जाए। इसके लिए भक्तों को बहुत प्रयास करना होगा। भक्तों पर ये जिम्मेवारी है। एक तो जिम्मेवारी भगवान कृष्ण दे करके गए और दूसरी बार जिम्मेवारी श्रील प्रभुपाद जी दे करके गए। एक बार वे बोले हैं रथ यात्रा के अवसर पर सैन फ्रांसिस्को में, वो ये बात कह दिए कि मैं बूढ़ा व्यक्ति हूं, कभी मर सकता हूं। कितने भक्त रोए थे इस वाक्य को सुनकर, लेकिन प्रभुपाद जी तो फैक्ट बोले, आई एम ए ओल्ड मैन हु कैन डाई एनी मोमेंट। तो ये सब जिम्मेवारी तुम लोगों पर है, तुम लोग युवक हो, इसको ग्रहण करो और प्रचार करो। श्रील प्रभुपाद जी बड़े स्नेह से अपने शिष्यों पर, प्रशिष्यों पर, भगवान कृष्ण की इच्छा को छोड़कर गए, उनकी इच्छा को पूरा करो, प्रचार करो। भक्त कर ही रहे हैं, जैसे गीता डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है सब जगह। तो ये बहुत अच्छा हो रहा है और अधिक होना चाहिए। प्रवचन करने वाले भक्त भी ट्रेंड होकर के जहां तहां प्रवचन करें, गाने वाले गाने की कला का अभ्यास करें और अधिक, गीत गावें, भगवान का गीत गाने से भी भगवान का प्रचार होता है। और कलाकार, फिलॉसफर आदि सब अपने अपने एसेट को, अपनी सुविधा को, अपनी विशेषता को भगवान की सेवा में अर्पित करें। इस तरह से हम भक्तों के द्वारा भगवान कृष्ण की इच्छा पूरी होगी। करने वाले तो सब वही हैं, जैसे महाभारत में अर्जुन को उन्होंने कहा कि सब काम हो चुका है, तुम निमित्त मात्र बनो, धनुष उठाओ, दिखा दिया कि सब मर गए, सबको मार चुका है। वैसे ही काम तो होगा ही, भगवान का जो प्रचार होना है होगा, लेकिन उसमें हमें निमित्त बनना चाहिए। भगवान सब सुविधा देते हैं, निमित्त बनना चाहिए, बड़े उत्साह से भगवान की भक्ति में लगे रहना चाहिए। हरे कृष्ण, जय श्री कृष्ण। कई ऐसे भक्त हैं जो अगर जानते हैं, एक्सपर्ट हैं भगवान के बात को कहने में, तो उन्हें कहना चाहिए। ऐसे नहीं, मान लीजिए कोई डॉक्टर दवा आपको दे रहा हो, डॉक्टर दवा दे रहा हो तो आप ऐसा मत कहिए पहले खा लो तब दो, और मैं देखना चाहता हूं कि तुम निरोग हो गए। तो फार्मेसी में कोई दवा बेच रहा है तो ऐसा नहीं कह सकते ना, जो दवा दे पहले खाए, खुद खा ले और तब दे। भगवान की कौन सेवा महत्वपूर्ण है? अर्जुन को भगवान ने लड़ने के लिए कहा और उद्धव जी को कहा तुम घर द्वार छोड़कर विरक्त बन जाओ, बद्रिकाश्रम जाओ। वो दूसरे तरह से भगवान की आज्ञा का पालन कर रहे थे और अर्जुन दूसरे तरीके से कर रहे थे। जिसमें जो विशेषता है वो विशेषता लगनी चाहिए, इसी से भगवान प्रसन्न होते हैं। किसी भी दशा में हमें श्री कृष्ण की आज्ञा देखनी है कि वे क्या चाहते हैं, वो हमसे क्या अपेक्षा करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी क्या चाहते हैं, हमसे वो क्या चाहते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। अपनी इच्छा अर्जुन जैसे शुरू में रख रहे थे, नहीं मैं भीख मांगना चाहता हूं, हम गुरुजनों पर हथियार नहीं उठाएंगे, भीख मांग करके खाना बेहतर है, इनके खून से सना हुआ राज हम नहीं लेंगे। तो कुछ भी करे, सुनने में बहुत अच्छा अहिंसक विचार है, लेकिन भगवान की इच्छा के अनुकूल नहीं। अंत में अर्जुन ने कहा करिष्ये वचनं तव। तो हमें वही करना है जो श्री कृष्ण चाहते हैं, और श्री कृष्ण चाहते हैं भाया श्रील प्रभुपाद चाहते हैं। श्रील प्रभुपाद के वाक्य से प्रकट होता है, हम लोग अर्थ समझते हैं कृष्ण क्या चाहते हैं, कृष्ण क्या चाहते हैं। ऐसा महापुरुष जिसने क्लियर कहा कि भगवान श्रीकृष्ण का प्रचार होना चाहिए, प्रीचिंग इज द एसेंस, तो प्रभुपाद जी श्रीकृष्ण की भगवान की बात को समझ रहे हैं, वे क्या कह रहे हैं। तो इस तरह श्री प्रभुपाद जी श्री भगवान और अन्य वैष्णव आचार्यगण क्या चाहते हैं वही करना है, वही हमारा स्वधर्म है, उसी में जीना है, उसी में मरना है। स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह, हमको जो ड्यूटी दी गई है वही करना है, दूसरे की ड्यूटी हमारे लिए भयावह। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। हरे कृष्ण।